प्रातः क्लास चल रहा था, 5/11/1966 शनिवार को 8वें पेज की 4थी लाइन में बात चल रही थी, जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी और तुम आत्माओं को नंबरवार वर्षा मिल जाएगा, तो पीछे क्या होगा? जाकर के थोड़ा ठहरना। कहाँ ठहरना? बाप के घर में। जो बाप का घर वो बच्चों का घर, और बाप ने महामंत्र क्या दिया है? मन मना भव। मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाजा। लेकिन बेहद के दो बाप हैं, एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्यों का बाप। तो कौन से बाप ने कहा मन मना भव?
मनुष्य सृष्टि के बाप
ने कहा मन मना भव?
आत्माओं के बाप
ने कहा मन मना भव? आत्माओं के बाप को मन है, अमन है या मन है? वो तो सदा मन चैन में रहने वाला है। जिन आत्माओं को मन है उनका मन चंचल होता है और चैन में नहीं रह पाती। मननात मनुष्य कहा जाता है। जो मन का उपयोग करता है, मन चलाता है, उसे कहते हैं मनुष्य, नहीं तो जानवर। तो जो भी मनुष्य मात्र हैं, मन वाले, उन सब का बाप कौन है? परिवार में बाप ही सबसे जास्ती शक्तिशाली होता है। तो जो बाप है मनुष्य सृष्टि का, वो भी तो बेहद का बाप है। दो बेहद के बाप हैं, तो दोनों में से कौन कहता है मन मना भव? क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बाप मन वाला है। और बाप का मन जैसी और जिस ऊंचाई तक टिकेगा उससे जास्ती ऊंचाई तक बच्चे नहीं जा सकते। मनुष्य सृष्टि में ऊंचे से ऊंचा बाप है, परंतु आत्माओं का बाप नहीं है। आत्माओं के बाप के पास मन नहीं है, वो तो बुद्धिमानों की बुद्धि है। कि मन वाला है, है? मन वाला है, मन वाला तो नहीं है। तो जो कहता है मन मना भव, जरूर पहले मन को ऊंचे से ऊंची स्टेज में टिकाने वाला होगा। ऊंचे से ऊंची स्टेज है ही आत्माओं का घर। और आत्माओं के बाप शिव ने ब्रह्म वाक्य बोला कि तुम बच्चे आत्माओं का घर, जिसे परम धाम कहा जाता है, उस परम धाम को तुम बच्चे इस सृष्टि पर उतार लेंगे। क्या कहा था, याद है नहीं? याद है,
याद है।
तो परम धाम को इस सृष्टि पर उतारने वाली आत्माओं में कोई तो अव्वल नंबर होगा। जो अपनी आत्मा की ऐसी स्थिति बना ले कि ये साकार दुनिया याद ही ना आए, ऐसी प्रैक्टिस करे जो गीता में लिखा है, अर्जुन को बोला है अर्जुन ने प्रश्न किया, ये मन बड़ा चंचल है, तो जवाब दिया अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इस मन को बार बार अभ्यास करके और इस पंचभूतों वाली दुनिया से वैराग्य करके, राग नहीं विराग, राग माने प्रेम, विराग माने विपरीत राग, माने इस दुनिया और इस दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संबंध, कोई भी संपर्क याद ना आए, ऐसा वैराग्य प्राप्त कर ले। और ऐसी याद निरंतर याद हो जाए, मैंने भविष्य के लिए बोला कि तुम बच्चे परम धाम को भविष्य में इस सृष्टि पर उतार लेंगे, नंबर बार उतारेंगे या एक साथ उतारेंगे? तो नंबर बार में जो अव्वल नंबर होगा उसके ऊपर जिम्मेवारी आती है। बोला जब आत्मलोक अर्थात निरंतर आत्मिक स्थिति में टिक जाओ तो जा करके वहां थोड़ा ठहरना, मना तुरंत वापस इस सृष्टि पर इस दुखी दुनिया में वापस नहीं आ सकते। फिर फायदा ही क्या हुआ? दुखी दुनिया से गए और दुखी दुनिया में ही वापस आ गए कलयुग के अंत में, जब सारी सृष्टि तमो प्रधान हो जाती है, चैतन्य भी और जड़ पांच तत्व भी, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश सब तामसी हो जाते हैं, और पांचों तत्वों में बड़ा विनाशकारी तत्व है पृथ्वी, जिसका नाम देते हैं प्रकृति, जिस पृथ्वी में पांचों ही तत्व समाये हुए हैं। क्या नाम दिया? प्रकृति। प्र माने प्रकष्ट, कृति माने रचना। कैसी रचना है? प्रकष्ट रचना, साधारण सामान्य रचना नहीं। प्रकष्ट रचना कैसे बनती है? सहज पुरुषार्थ से बनती है या घना पुरुषार्थ करना पड़ता है? है घना पुरुषार्थ करना पड़ता है। कृति माने रचना, रचना ऐसी प्रकष्ट रचना बनाने के लिए घना पुरुषार्थ करने वाला साकार होगा या निराकार? रचना साकार, तो रचयिता भी साकार। जैसे निराकार रचयिता, तो उसकी रचना भी निराकार। निराकार रचयिता बाप से निराकार वर्षा मिलता है।
कौन सा?
ज्ञान का निराकार वर्षा मिलता है। उसके पास कुछ और है? है ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में ज्ञान से जास्ती पवित्र कोई चीज है ही नहीं, और पवित्रता की पावर से दुनिया के सारे कार्य संपन्न होते हैं। अच्छे से अच्छे देवताओं के देवात्माओं के कार्य हों अथवा बुरे से बुरे राक्षसी आत्माओं के राक्षसी कार्य क्यों न हो, कैसे संपन्न होते? प्योरिटी की पावर से। जैसे जालंधर देवता था या राक्षस था, जलंधर क्या धर के बैठे गया है, ज्ञान जल को धर के बैठ गया। माना दुनिया की जो सबसे ऊंची पावर है उसको धारण कर लिया। अरे दुनिया की सबसे ऊंची पावर पवित्रता है या ज्ञान है? है पवित्रता है, लेकिन ज्ञान नहीं है तो वो ऊंचे से ऊंची पवित्रता भी धारण नहीं की जा सकती। की जा सकती है? है नहीं? नहीं धारण की जा सकती, क्योंकि इस दुनिया में आदि से लेकर के अंत तक पवित्रता की देवी कोई आत्मा है? है जो कभी भी विचारणी नहीं बनती, कोई है? कौन? जिसकी पहले पहले पूजा होती है, महागौरी, वरों शंभु नतु रहों कुंवारी। एक जन्म की बात नहीं, अनेक जन्मों की बात है। वो ऐसी श्रेष्ठ आत्मा जो जन्म जन्मांतर एक के गहरे से गहरे संबंध में आती है, और जिस संबंध में राज भरा हुआ होता है वो कौन सा संबंध है? है? अरे वो संबंध ही याद नहीं है। लक्ष्मी नारायण का संबंध होने का है, और दुनिया में कोई आत्माओं का संबंध ही नहीं होता है। माँ बाप का संबंध है। अच्छा बच्चा बच्चा बुद्धि है, बच्चा चलो बड़ा भी हो जाए, बाप से वर्षा भी मिल जाए, फिर उसे और कुछ आकांक्षा नहीं रहती है। धनवान बाप का सारे धन का वर्षा मिल जाए, है? हाँ, ये दुनिया का, दुनिया के प्राणियों का ऐसा संबंध है जो बहुत गहरा है। किस आधार पर? याद के आधार पर। जिस संबंध से बड़े से बड़ा सुख भी महसूस होता है और बड़े से बड़ा दुख भी महसूस होता है। कितनी गहरी याद का संबंध है। कि पुरुष मरता है तो सारे जीवन में उस पुरुष ने किससे सुख की प्राप्ति की है? स्त्री से। और इस पतित दुनिया में भ्रष्ट अंग से प्राप्ति की है। जिसे कामांग कहा जाता है। तो सारा जीवन वो सुख प्राप्त किया है, इसलिए अंत समय में क्या याद आता है? है सारा जीवन जो याद किया जाता है, अनुभव किया जाता है, वो याद जरूर आता है। कब? अंत समय में। तो अंत मते सो गते हो जाती। माने पुरुष को कौन सा जन्म मिलता है? स्त्री अंग का जन्म मिलता है। ऐसे ही स्त्री को। तो इतना गहरा संबंध है। और सिर्फ मनुष्यों की ही बात नहीं, हर योनि में मेल और फीमेल तो होते हैं या नहीं होते हैं? जैसे जड़ पेड़ है पपीता या कोई भी फल का वृक्ष, उसमें भी मेल और फीमेल तो होते ही है। तो ये सार्वभौम संबंध है। इसलिए बताया कि जो परम पवित्र पार्ट बजाने वाली आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है, जिसे अव्वलम्बर देवी के रूप में अव्वलम्बर में पूजा जाता है, बाकी देवियों की पूजा बाद में होती है। वो देवी एक ही आत्मा से जन्म जन्मांतर का गहरा संबंध जोड़ने की आकांक्षी रहती है। वो संबंध है, जोड़ेगी तो उससे जोड़ेगी, नहीं तो कुंवारी रहेगी। तो वो आत्मा जिसे लक्ष्मी कहा जाता है, वो लक्ष्मी जब तक ज्ञान न ले कैसा ज्ञान? बेसिक ज्ञान या पराकाष्ठा वाला ज्ञान? जिसे एडवांस ज्ञान कहा जाता है, जिसके लिए मुरली में बोला अभी गीता ज्ञान कहेंगे लेकिन गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। मना ब्रह्मा के मुख से जो भी निकला ज्ञान, जो भी वेदवाणी निकली, वो ज्ञान था लेकिन अमृत का रूप धारण नहीं किया। क्यों? क्योंकि मंथन हुआ ही नहीं। तो ज्ञान का मंथन करने वाला और सिर्फ ज्ञान सुनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा, ज्ञान सुनाने वाली आत्मा कौन और ऊंचे ते ऊंचे या ज्ञान का मंथन करने वाली आत्मा कौन? अरे जल्दी बताओ। मनुष्य सृष्टि में जो हीरो पार्टधारी आत्मा है वो मनन चिंतन मंथनशील है सबसे जास्ती मनुष्य आत्माओं के बीच, और आत्माओं के बीच है जो आत्माएं हैं उन आत्माओं के बीच जो सबसे पावरफुल आत्मा है जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, उसका शरीर है होता है होता ही नहीं? शरीर नहीं होता है तो शरीर की नौ इंद्रियां भी नहीं होती। तो शरीर की नौ इंद्रियों में से जो बड़े से बड़ी पावरफुल इंद्रिय है कौन सी? मन। वो भी नहीं होता तो उसे सोचने की दरकार है?
नहीं,
नहीं है, वो तो असोचता है। और फिर सबसे बड़ा सोचता कौन है? मनुष्य सृष्टि का बाप सबसे बड़ा सोचता, मनन चिंतन करता, ऐसा मनन चिंतन करता जो देव योनि में देवताओं की सृष्टि जो सतयुग त्रेता है उसमें तो लगातार आत्मिक स्थिति में रहता ही है। आत्मिक स्थिति से बाहर जाता ही नहीं, माना आत्मा चंचल होती ही नहीं। परंतु द्वैतवादी द्वापर युग से वो आत्मा सबसे जास्ती मन चलाने वाली बनती है, या और मनुष्य आत्माओं के मुकाबले कम मन चिंतनशील बनती है? है हाँ, तो सबसे जास्ती मन चिंतन मंथनशील होने के कारण उसका हिस्ट्री में नाम भी रहा होगा। काम के आधार पर नाम होता है ना? है? तो बताओ द्वापर के आदमी उस आत्मा का क्या नाम रहा होगा? हाँ, बी माने विशेष, आस माने बैठ गया। किस विशेष काम के लिए बैठ गया? मनुष्य शरीर में नौ इंद्रियां, उनमें जो सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय है कौन सी? मन। उस मन का कार्य करने के लिए परमानेंट बैठ गया। तो उसका नाम पड़ा व्यास, विशेष रूप से बैठ गया, क्योंकि साधारण जो इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां और थोड़ी श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रियां, उनका कार्य करने वाली तो बहुत आत्माएं हैं, लेकिन श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ इंद्रिय जो मन है, उस मन का कार्य करने वाली सिर्फ कौन सी इंद्रिय, और उस इंद्रिय का काम करने वाला कौन सा व्यक्ति, जिसका काम के आधार पर नाम पड़ा व्यास। क्या काम किया? क्या मनन चिंतन मंथन किया? उसके मनन चिंतन मंथन का कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए, जिस प्रूफ का सारी दुनिया सब धर्म के अवलंबी लोहा मानते हो। भागवत तो बाद में बनाया हुआ पुराण है, पुराणों से भी पहले उपनिषद बने, पुराणों में भी वेदों की व्याख्या है, बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है, जिनमें मुख्य है महाभारत पुराण, भागवत पुराण और रामायण पुराण। लेकिन पुराणों से भी पहले वेदों की व्याख्या हुई है या नहीं हुई है? है? हुई है। उन व्याख्याओं का नाम है उपनिषद, और उपनिषदों में भी व्याख्या है। उपनिषद से पहले शतपथ ब्राह्मण आदि लिखे गए, ब्राह्मणों ने ही लिखे, और उससे भी पहले आरण्यक लिखे गए, आरण्य जंगल को कहा जाता है, जो जीवन भर जंगल में रह करके मनन चिंतन मंथन के कार्य में लगे रहे, उस कार्य का नाम पड़ा आरण्यक। आरण्यक भी वेदों की व्याख्या थी, और वेद लिखने के काम में नाम तो प्रसिद्ध ही है। किसका है? है? हाँ, वेद व्यास कहा जाता है, और वेद व्यास ने जो वेद लिखे गए, उन वेदों में कौन सा वेद है जिसमें खास सच्चाई की ऋचाएं हैं, उसका नाम ही है ऋग्वेद। ऋक् माने सच्चाई, और ऋग्वेद अगर सच्चाई है तो आज दुनिया में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए है? अरे सत्य सदैव रहता है या कभी रहता है कभी नहीं रहता है?
सदा रहता है।
तो कुछ न कुछ सच्चाई आज की दुनिया में भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो ऋग्वेद कोई पढ़ता है सुनता है उसकी व्याख्या करता है समझता है समझाता है। सुना है किसी ने? नहीं, क्योंकि ड्रामा में जैसी शूटिंग होगी वैसा ही तो ब्रॉड ड्रामा चलेगा है? कि अंतर पड़ेगा? अंतर तो नहीं पड़ेगा। तो जब भगवान बाप डायरेक्टर बन करके शक्ति पर गुप्त रूप में पर्दे के पीछे पार्ट बजाता है तो ब्रह्मा के द्वारा जो वेद व्याणी मुख से निकलती है वो वेदवाणी में सबसे बड़ी सच्चाई का जो ग्रंथ है दुनिया में जिसकी सारी दुनिया के मनुष्य मात्र सब धर्म के लोग लोहा मानते हैं, इस ग्रंथ में जितनी सच्चाई है उतना दुनिया के और किसी ग्रंथ में सच्चाई ज्ञान है ही नहीं। वो कौन सा ग्रंथ है? श्रीमद् भगवत गीता। भगवान का गाया हुआ गीत, और वो भगवान ने जिस गीत को गाया उसके संकलन का नाम क्या पड़ा है? श्रीमद् भगवत गीता। माना वेदवाणी, विद माने जानकारी, काई की जानकारी, सत्य की या असत्य की जानकारी? सत्य की जानकारी। तो जो वेदवाणी निकली उस वेदवाणी में भी जो सत्य ही सत्य महावाक्य हैं, उनको हम बच्चों ने नाम दिया, क्या नाम दिया? मुरली। अभी पता चला कि आज की दुनिया में वेदों को लोग क्यों नहीं सुनते सुनाते, क्यों नहीं समझते समझाते है? इस ब्रॉड ड्रामा में क्यों नहीं सुनते सुनाते सुनाते? क्योंकि भगवान ने जब आकर के ये ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग की थी तब भी ब्रह्मा के मुख से जो वेदवाणी बोली थी वो वेदवाणी का रहस्य किसी को समझ में नहीं आया। एक एक शब्द में सच्चाई भरी हुई, एक एक वाक्य में सच्चाई भरी हुई, लेकिन समझ में किसी को नहीं आया। इसलिए शूटिंग पीरियड का जब अंत समय आएगा जिस समय सारी दुनिया सत्य बाप को पहचानेगी या नहीं पहचानेगी, सत्य बाप का वर्षा लेगी या नहीं लेगी, है सारी दुनिया सत्य बाप का वर्षा लेगी, क्योंकि जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उन मनुष्य आत्माओं में नंबरवार आत्माएं इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर सत्य पाठ बजाने वाली हैं। सभी आत्माएं बाप के बच्चे हैं, सबको सत्य का वर्षा सदगति मिलनी चाहिए, है कि कोई आत्मा मनुष्य आत्मा को मिलनी चाहिए कोई को नहीं, सदगति का वर्षा सबको मिलना चाहिए, कम से कम एक जन्म का वर्षा तो सबको मिलता ही है। सत्य का वर्षा कहो, ज्ञान का वर्षा कहो, सबको मिलता है। सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है, सत्य को ही गॉड कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। अंग्रेज लोग भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। गॉड क्या है? सत्य का भंडार है। कैसा भंडार? ज्ञान का अखूट भंडार है, जिसमें से सारा भंडार कोई निकाल ले तो भी पूरा का पूरा बचता है। वो ऐसा भंडार है जो कभी खत्म होता ही नहीं, और वो सत्य का भंडार पूरा का पूरा उठाने वाला कोई तो होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं? क्यों नहीं होगा तो नहीं चलेगा, है? है? क्यों नहीं चलेगा, है?
तो बात में पड़ेगा।
सत्य उसे कहा जाता है जो 100% सत्य हो। उसी से अमृत बनता है। अमृत माने आ माने नहीं, मृत माने मरा हुआ, अर्थात सदा काल का जीवन धारण करने वाला अमृत बनता है, जो कभी मरता ही नहीं। तो ऐसा कोई दुनिया में हो सकता है जो कभी मरता ही नहीं है? गीता में तो आया है ध्रुवम जन्म अमृतस्य च, जो मरता है उसका जन्म भी जरूर होता है, और जिसका जन्म होता है वो मरता भी जरूर है। तो ऐसा भी कोई हो सकता है क्या जो कभी मरता ही नहीं, कभी जन्म लेता ही नहीं? जन्म मृत्यु से परे ऐसा कोई हो सकता है क्या? है
हो सकता है,
हो सकता है।
शिव को क्या कहेंगे जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है?
जन्म मरण से परे,
जन्म मरण से परे उसका जन्म नहीं होता है। महाशिवरात्रि किसकी यादगार है? शिव जयंती की यादगार नहीं है, है? हाँ, प्रत्यक्ष नहीं होता है इस दुनिया में। उस बाप को कोई प्रत्यक्ष है, बाप को कोई पहचानता ही नहीं। अगर पहचानता ही नहीं, बाप बाप होकर मिलता ही नहीं, तो वर्षा कैसे देता है? सभी आत्माओं को नंबर वार सत्य का वर्षा देता है या नहीं देता है? है? तो प्रैक्टिकल में आकर देता है या बिंदु रूप में ही रह करके देता है? इसलिए बाप कहते हैं मेरा जन्म तो है, क्या गाया जाता है, लेकिन मेरी मृत्यु नहीं है। ब्रह्मा की मृत्यु गाई जाती है। स्मृति दिवस कौन सा? 18 जनवरी। लेकिन मेरी मृत्यु नहीं गाई जाती, क्योंकि होती ही नहीं। मैं तो मृत्यु में कभी आता ही नहीं। इस सृष्टि में भी आता हूँ, भले दिव्य जन्म लेता हूँ, और जिसका जन्म होता है वो साकार में होता है। साकार की जयंती मनाई जाती है या निराकार की जयंती मनाई जाती है? साकार की जयंती मनाई जाती है। वर्ष वर्ष मनाई जाती है। मेरी भी जयंती वर्ष वर्ष मनाई जाती है। तो वो शिव जिसका जन्म तो है परंतु मृत्यु मृत्यु नहीं है, तो इस दुनिया में जन्म मृत्यु के फेरे में आने वाली 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच कोई आत्मा है ऐसी स्टेज को पाने वाली? कम से कम एक बार ऐसी स्टेज को पाने वाली, एक जन्म के लिए। जो गाया जाए कि ये आत्मा इस सृष्टि में सदा काल रहते हुए भी जन्म मृत्यु से परे बन जाती है, तो ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मण जो पक्के ब्राह्मण हैं, वो हर बात के अर्थ को बेहद में उठाते हैं या हद में उठाते हैं? बेहद में उठाते हैं। अपने स्वरूप को देखेंगे तो बेहद आत्मिक स्थिति के रूप में देखेंगे, अपन को देह नहीं देखेंगे, दूसरों को भी नहीं देखेंगे। तो एक जन्म ऐसा भी है जिसे ईश्वरीय जन्म कहा जाता है, जो आत्माओं का बाप है। सभी आत्मा रूपी बच्चों के ऊपर ईशत्व करता है। ईश माने शासन करना, सारी मनुष्य आत्माओं के ऊपर शासन करता है। किस आधार पर है? पुलिस के डंडे के आधार पर, मिलिट्री के आधार पर है? हाँ, उसमें ज्ञान की शक्ति है। तो ज्ञान की शक्ति के आधार पर सारी मनुष्य सृष्टि में उसका कंट्रोल चलता है। ऐसे नहीं सिर्फ मनुष्य आत्माओं में ही कंट्रोल चलता है, जो पशु पक्षी जीव जंतु हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल रहता है या नहीं रहता है? है? शेर बकरी के लिए क्या कहने, एक घाट पानी पीते थे तो वो सत्य के आधार पर पीते थे या असत्य के आधार पर?
सत्य के आधार पर।
सत्य के आधार पर, ज्ञान रूपी पवित्रता के आधार पर इस मनुष्य सृष्टि में मनुष्य के वाइब्रेशन जब 100% ज्ञान युक्त बन जावेंगे तो इस सृष्टि के जड़त्व में ही बुद्धि वाले जानवर पक्षी जीव जंतु कीड़े मकोड़ों पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ता है। और वो ईश्वर का ईश्वरत्व शासन, प्यार का शासन है। ये पुलिसिया मार का शासन है,
प्यार का शासन है।
देवान की कर्म इंद्रियों के द्वारा पिटाई का शासन है या आंखों से भी प्यार का शासन है?
आंखों से भी प्यार का शासन है।
उस ज्ञान का प्रैक्टिकल रूप है 100% प्यार। क्या बिच्छू है काटने वाला, सांप है काटने वाला, कितना भी दूध पिलाओ फिर भी काटेगा। तो ऐसे प्राणियों के प्रति भी प्यार, किस आधार पर? ज्ञान के आधार पर, क्योंकि बुद्धि में ज्ञान है कि हमने दुख दिया होगा अमुक आत्मा को, तभी वो आत्मा हमको दुख दे सकती है। हमने दुख नहीं दिया होगा तो कोई भी आत्मा हमको दुख नहीं दे सकती। लक्ष्मी नारायण जब इस संसार में प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष होंगे तो उनको संसर्ग संपर्क में आने वाली कोई आत्मा ऐसी होगी जो उनको दुख दे? होगी नहीं होगी? ऐसे ही हर आत्मा के लिए ये बात लागू होती है। जब हर आत्मा याद का पुरुषार्थ करके, जिस याद को ही प्यार कहा जाता है सच्चा, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज है जो सभी उसको अनुभव करते हैं, पशु भी अनुभव करते हैं, पक्षी भी अनुभव करते हैं। अनवरत प्यार, और जिसके प्रति प्यार होता है झूठा या सच्चा, सच्चा प्यार जिसके प्रति होता है, दिली प्यार जिसे कहते हैं, तो उसके प्रति कभी अनहित का भाव पैदा होगा, इसका अकल्याण हो जाए, ऐसा भाव पैदा होता है नहीं होता है। तो ऐसा प्यार कहो, ऐसी याद कहो, अनवरत प्यार, अखंड प्यार, कि स्टेज जब बन जाती है तो चाहे पशु हो, पक्षियों की आत्मा हो, वो भी उसे पहचान लेते हैं। ऐसे नहीं नहीं पहचानते हैं, इसलिए आज तक भी गायन है कि ऋषियों मुनियों के आश्रम में भले द्वापर युग था, ऋषि मुनियों का आश्रम में जो पवित्र वातावरण होता था, उस वातावरण के प्रभाव में आकर वो शेर बकरी भी एक घाट पानी पीते थे। वो थी द्वैतवादी दुनिया की बात। अभी भगवान बाप आया हुआ है, सारी मनुष्य सृष्टि का, सभी मनुष्य आत्माओं का एक बाप आया हुआ है, तो वो एक बाप इस सारी वसुधा को, पृथ्वी को एक ऐसा कुटुंब बनाकर जाएगा जहां सभी आत्माएं एक दूसरे का हित ही चाहेंगी, अनहित नहीं चाहेंगी। ऐसी दुनिया बना कर जाएगा कौन है, कौन कौन बना कर जाएगा, नाम बताओ। शिव बाप। अच्छा, शिव बाप अगर ऐसी दुनिया बनाता है तो वो जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों की आत्माओं को भी ज्ञान देकर जाता होगा। पांच जड़ तत्वों को भी ज्ञान देकर जाता होगा, जो गीता में दो प्रकार की प्रकृति बताई है, एक जड़त्वमयी प्रकृति और एक चैतन्य परा प्रकृति, चैतन्य आत्माओं, पृथ्वी पृथिव्यात, जो चैतन्य रूप में फैलती है, विस्तार को पाती है, जड़ भी विस्तार को पाती है, और चैतन्य आत्मा भी कोई है जो इतना विस्तार को पाती है, जिसको विस्तार के रूप में जाता हुआ प्रैक्टिकल में देख करके दुनिया की सभी मनुष्य आत्माओं ने उसे भगवान मान लिया। कौन सा अवतार है? मत्स्या अवतार, मछली का अवतार। कहते कोई राजा या ऋषि ने नहाते समय अंजलि में ले लिया था, पानी के साथ आ गई, इतना छोटा था, बढ़ते बढ़ते कितना बड़ा रूप धारण किया, इतना बड़ा रूप धारण किया कि जिस नदी में डालते थे वो नदी बहना बंद हो जाती, नदी का जल ही रुक जाता। क्या? नदी का जल रुक जाता था। तो फिर उसको नदी से भी उठा करके कहाँ डाल दिया? सागर में डाल दिया। है ज्ञान सागर की बात। बताओ वो कौन सी नदी है? है ज्ञान नदी। उस ज्ञान नदी का नाम भी तो होगा, है गंगा। गंगा नदी है। अरे गंगा नदी तो राम तेरी गंगा मैली फिल्में बन गई है। गायन है या नहीं? हाँ, ऐसी नदी जो ज्ञानमान सरोवर से निकलती है, सबसे ऊंची स्टेज वाले सरोवर से, जिसके लिए बोला वाणी में, क्या बोला है भूल गए? मिनी मधुबन वालों को और मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, और ज्ञान सरोवर वालों को उनका जो माउंट आबू में बना रखा ज्ञान सरोवर वो छोड़ना पड़ेगा। है कौन सा ज्ञान सरोवर? है कौन सा ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा? अरे अरे अभी तो बताया दुनिया का बड़े से बड़ा पारदर्शी ज्ञान जल वाला सरोवर, ऊंचे से ऊंची स्टेज में रहने वाला सरोवर एक ही है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। कौन सा? ज्ञानमान सरोवर। वो ज्ञानमान सरोवर दुनिया की हर मनुष्य आत्मा को जब माया का फाइनल पेपर होता है तो भी छोड़ना पड़ता है। झूठ बोला क्या वाणी में? झूठ बोला
नहीं।
ये भी बता दिया कि परीक्षा थोड़े समय की होती है या सदाकाल की होती है? थोड़े समय की होती है। वो थोड़े समय की माया के फाइनल पेपर में सब फेल हो जाते हैं। क्या है? सबको वो नदी जिसको बड़े से बड़ी ज्ञान नदी कहा जाता है लेकिन गुप्त है। क्या नाम है? क्या नाम है नदी का? है जगदम्बा सरस्वती। घूंघट में है यह अभी प्रत्यक्ष है। घूंघट में है, वो ऐसा विस्तार का बड़ा रूप धारण करेगी कि सारी दुनिया पर राज करेगी। राज करेगा खालसा, खालिस पवित्र को कहा जाता है, है? महाकाली बता दिया, कलम ही बता दिया, है? दुनिया में तो खराब माना जाता है, इसने काला मुंह को लिया, अच्छा माना जाता है काला मुंह करने वाला या बुरा माना जाता है? ये तो बुरा माना जाता है। तो महाकाली का रूप धारण करती है और इस दुनिया के सभी मनुष्य मात्र का गला काट देती है। क्यों? इस दुनिया में सभी मनुष्य मात्र राक्षस संप्रदाय बन जाते हैं क्या? है? नहीं बनते,
बनते
हैं,
बनते
हैं, बनते हैं। अच्छा आसदेव बनते हैं?
अभी तो नहीं बनते,
अभी नहीं बनते, कभी
बनेंगे,
सभी नहीं बनते। कोई अष्टदेव बनता है? है? अष्टदेव महादेव नहीं कहा,
बनता है,
है?
नंबर बात तो बनता है।
वो अष्टदेव है कि महादेव है? अष्टदेव है, है? उसकी यादगार में अंगूठी पहनते हैं तो आठ रतन चारों ओर आसपास और बीच में, बीच में नौवा सबसे श्रेष्ठ रतन हीरा डालते हैं, डालते हैं कि नहीं? तो वो नौवा है या पहला नंबर है? नौवा है, है? अव्वल नंबर है, उसके बाद और आठ हैं। क्या उन आठ में एक नो वैल्यूबल पुखराज दूसरे रत्नों की वैल्यू बताने के लिए, इसलिए ऋषि माने पवित्र। क्या द्वापर के आदि में सबसे जास्ती शास्त्रों का मनन चिंतन मंथन करने वालों का नाम क्या दिया शास्त्रों में? ऋषि। कितने कितने ऋषि? सप्त ऋषि। चलो जो भी हो, जो आठ हैं धर्मराज की सजाएं नहीं खाते हैं, उन आठ को भी माया छोड़ती छोड़ती नहीं है, क्योंकि उनमें से अगर एक को भी छोड़ दिया तो द्वापर कलयुग में उस एक का ही राज्य होगा या माया का राज्य होगा? बताओ जल्दी से, हैं? अरे उस एक का राज्य होगा जिसको माया नहीं जीत पाएगी, या माया रावण का राज्य होगा? उस एक का ही राज्य हो जाएगा। तो वो तो आधा राज्य लेने वाला वो एक ही अष्टदेव हो गया, और माया तो अष्टदेवों में आती नहीं है। आती है नहीं आती है? जो माया है उसका तो नाम ही ऐसा है, मा माने नहीं, आया माने आया, ना आई होती तो बड़ा अच्छा था। क्या? हाँ, 84 जन्मों में सुखी सुख होता, दुख का नाम नाम निशान नहीं होता, लेकिन वो आती है, है? और आती है तो भगवान से लड़ाई लड़के आती है, युद्ध करके आती है, या बिना युद्ध के ये आती है? युद्ध करके आती है, क्योंकि दुनिया में जितनी भी राजाइयां हुई हैं, युद्ध करके विजय पाई तब राजाई हुई, या बिना युद्ध के राजाई मिल जाती है? युद्ध करके मिलती है। तो माया भी अच्छी तरह जानती है क्या है, क्या जानती है, है युद्ध करना जानती है। कौन सा युद्ध करना जानती है? माया का युद्ध करना जानती है। माया का युद्ध जो है वो 10 इंद्रियों के आधार पर होता है, वो 9 इंद्रियों के 10 इंद्रियों के आधार पर होता है, या सिर्फ 11वीं इंद्रिय के आधार पर होता है? है? सारी इंद्रियों के आधार पर वो युद्ध होता है। मन के जीते जीत और मन के हारे हार। मन सभी इंद्रियों का मुखिया है, तो माया मन को भी अपने कंट्रोल में करती है या नहीं करती है? है? कौन है मन के रूप में पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा? जो जब संपन्न बनती है तो उस आत्मा का मन ही काम करता है या इंद्रियां काम करती हैं? है? क्यों? अरे स्थूल में उसको इंद्रियां है ही नहीं, क्या है उसको? मन ही है कार्यकर्ता या इंद्रियां भी हैं ब्रह्मा को जब अव्यक्त हो जाता है, तो उसका मन काम करता है, वाइब्रेशन को पकड़ने वाला है, या इंद्रियां काम करती है? मन काम करता है। ये भूत प्रेत जो भी हैं उनको स्थूल इंद्रियां होती नहीं, वो तो सिर्फ मन को कंट्रोल करती हैं, वाइब्रेशन को कंट्रोल करती हैं। तो भगवान आकर के नरको नारायण बनाता है, बनाता है कि नहीं? तो जो नर नारायण बनता है 100% वो नारायण वाइब्रेशन में, वाइब्रेशन की शक्ति धारण करने में 100% बनता होगा या नहीं बनता होगा? उसका यादगार कोई चित्र दिखाया? अरे साक्षात्कार में वो चित्र बनवा के दिखाया? अरे बाबा ने बोला मुख्य 4 चित्र हैं, जिन 4 चित्रों में सारी दुनिया का ज्ञान समाया हुआ है। कौन सा चित्र है?
त्रिमूर्ति
लक्ष्मी नारायण का चित्र है, जिसमें दिखाया गया कि लक्ष्मी नारायण की जो दुनिया है वो प्रकाश के वलय से लक्ष्मी नारायण को घेरे हुए है। ध्यान से देखा नहीं, ज्ञान प्रकाश में डूबी हुई है, उसका नाम ही है नारायण। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। उसका घर कहाँ है? ज्ञान जल के बीच में उसका घर है। ज्ञान की रोशनी में ही सदैव रहता है। तो जो ज्ञान की रोशनी में सदैव रहेगा उसका वातावरण, उसका वाइब्रेशन सदैव शुद्ध रहेगा या अशुद्ध रहेगा? सदैव शुद्ध वातावरण रहेगा, वाइब्रेशन रहेगा। उस वाइब्रेशन में रहने वाली माने आत्मिक स्थिति की पक्की जो आत्माएं होंगी, असल सूर्यवंशी जो प्रैक्टिस करके अपने देह भान को भूलेंगी और आत्मा बनेंगी। कितने जन्म के लिए है? 21 जन्म के लिए आत्मा बनेंगी।
84 जन्म
है? 84 जन्म लेने वाली पक्की आत्माएं बनेंगी, एक भी जन्म कम नहीं। ऐसी पक्की आत्माओं का जो वाइब्रेशन होगा वो बाप से मेल खाएगा या नहीं खाएगा? है?
खाएगा।
मेल खाएगा। बाप के वाइब्रेशन से मिलकर के दुनिया का ऐसा सशक्त वाइब्रेशन बनाएंगी, कब बनाएंगी? वो टाइम कौन सा होगा?
संगम युग।
100 साल का बता दिया। संगम युग में भी कौन सा टाइम? जो 100% सशक्त वाइब्रेशन इस दुनिया का बन जाएगा, 2018 में बन जाएगा। कितनी आत्माओं का?
8
का बन जाएगा। और बाकी 500-700 करोड़ का नहीं बनेगा। तो जब 500-700 करोड़ दुनिया का वातावरण वाइब्रेशन गंदा होगा, बंदर बुद्धियों का होगा, सबसे ज्यादा भिखारी बंदर, बंदर बुद्धियों का वाइब्रेशन सारी दुनिया में फैला हुआ होगा, तो वो 8 आत्माओं का संगठन का वाइब्रेशन कुछ काम करके दिखाएगा? है? नहीं दिखाएगा। वो अपूर्ण राजधानी होगी। भले भगवान कहते हैं ब्रह्मा मुख से, मैं जब आता हूँ तो दत्त से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूँ। बोला कि नहीं बोला?
बोला।
मैं जब आता हूँ तो राजा जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दे देता हूँ। देर नहीं लगती जीवन मुक्ति लेने में। तो इससे क्या साबित हुआ? सारी दुनिया को मिलती है जीवन मुक्ति 1 सेकंड में। है? जिनका पुरुषार्थ जिस घड़ी संपन्न होगा, पूर्व जन्म के पापों का घड़ा खाली हो जाएगा, तब ही तो अनुभव करेगा जीवन मुक्ति का, कि जीवन में भी रहे और मुक्त हो जाए पापों से। पूर्व जन्म के सारे पाप साप खलास, जीवन मुक्ति में ही अनुभव करे, जीवन में रहे सुख ही सुख का अनुभव करे। कहाँ? सतयुग में, त्रेता में, संगम युग में ही अनुभव करे। तो ऐसी आत्माओं का संगठन तब काम करेगा जब दुनिया की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं जो विकारी वातावरण बनाने वाली हैं, क्या कहा विकारी वातावरण बनाने वाली हैं, उनका शरीर खत्म हो जाए। तो कब खत्म होता है? जब प्रकृति विकराल रूप धारण करती है। कौन? प्रकृति। क्यों? माया विकराल रूप नहीं धारण करती। माया के विकराल रूप धारण करने से पापियों की दुनिया खलास होती है, या प्रकृति के विकराल रूप धारण करने से पापियों की दुनिया खलास होती है? प्रकृति के विकराल रूप धारण करने से ये पापियों की दुनिया खलास होती है। गीता के श्लोक में क्या कहा है? विनाशाय च दुष्कृताम। जो इंद्रियों से दुष्ट कर्म करना छोड़ते ही नहीं, उनका नाश कर देता हूं। कौन कहता है? कौन कहता है? कौन सी आत्मा कहती है?
भगवान बाप कहता है।
नाम तो बताओ उसका। अरे अभी तो कहता है मैं सबके लिए कल्याणकारी हूँ, मैं किसी का अकल्याण करता ही नहीं, मैं सबको सुख देने वाला सुखदाता गाया हुआ हूँ, सुख का सागर हूँ। हाँ, शिव तो सुख का सागर ही है, वो कभी भी किसी आत्मा को दुख देता ही नहीं। जो दुख देने वाला है वो क्या कहा जाता? दुख में आदमी रोता है अंदर से या बाहर से? बाहर की आंखों से या अंदर से रोता है या नहीं रोता? रोता है। उसको क्या कहा जाता है? रावण। तो कौन सी आत्मा है जो दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा रावण, सारी मनुष्य आत्माओं का, सभी मनुष्य आत्माओं को रुलाने वाला रावण भी साबित होता है? उसका नाम क्या है? प्रजापिता नाम है। प्रजापिता का तो अर्थ होता है 500-700 करोड़ प्रजा, उसका पिता जन्मदाता, तो वो तो अच्छी बात है। रुलाने वाले की क्या बात हुई? नाम क्या है उसका? रावण। राम ही रावण बनता है। ही क्यों लगा दिया? है
राम
भी बनता है। हाँ, कि राम ही राम बनता है और राम ही रावण बनता है। रुलाने वाला बनता है दुनिया का, बड़े से बड़ा रुलाने वाला। तो शिव रुलाने वाला नहीं है, आत्माओं का बाप। वो क्या है? प्यार का सागर। 80 साल हो गए। कितने हो गए? हाँ, मनुष्य आत्माओं ने, जो भी मनुष्य आत्मा इस दुनिया में है, उन्होंने रुलाने का काम छोड़ दिया है?
नहीं छोड़ा।
जो ब्राह्मण बने ब्रह्मा की औलाद, मुखवंशावली बने, उन्होंने रुलाने का काम नहीं छोड़ा। है? है? अरे छोड़ा कि नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा। ये कैसे है? है? आवाज नहीं कान में पहुंची।
कोई ना कोई तमाशा करता है, रुला देता है।
भगवान एक जगह टिककर के कार्य नहीं करने देता, कहता मैं सर्वव्यापी हूँ।
एक स्थान पर बैठने का उनका स्वयं से बैठकर ज्ञान सुनाने का उनका नहीं होता है ना, उनको भागना पड़ता है।
भगवान भागता है इसलिए ये भगवान नाम पड़ गया। क्या कहा? अरे भगवान मनुष्य आत्माओं को भगाता है, भक्त बनाता है भागने वाला, या उनकी मन बुद्धि रूपी आत्माओं को एकाग्र करता है? एक कोने में बैठे हुए क्या बोल रहे हैं, फोटो खींचो। श्रीमत के पर खिलाफ बात करने वाले को क्या कहते हैं? इनका नाम क्या है? सही बात बोला, राम ही रावण बनता है। श्रीमत के बर खिलाफ बात करता होगा तो काम भी करता होगा, है? करता होगा कि नहीं?
हाँ,
क्या प्रूफ? अच्छा मुरली के महावाक्य का प्रूफ बताओ। अरे बताओ भाई, राम भाई बताओ, है मुरली में कौन सा महावाक्य है जिससे साबित होता है कि वर्तमान समय तक भी पुरुषार्थी जीवन में राम की आत्मा भी रुलाने वाले रावण का बड़े से बड़ा काम करती होगी? रुलाने का काम बड़े से बड़ा है कि नहीं है? है तो कोई मुरली का प्रूफ नहीं। अरे अच्छा अच्छा हप हप और कड़ुआ कड़ुआ थू थू। अरे कड़वी बात भी स्वीकार कर लेना चाहिए ना। मुरली में जो कुछ बोला भले कड़ुआ बोला, भले मीठा बोला, मीठा बाबा तो मीठा ही बोलता है, लेकिन कोई समझते हैं ये बात हमें पसंद नहीं आई, तो वो ऐसी बात कौन सी है जिससे साबित होता है कि दुनिया की हर मनुष्य आत्मा एक दूसरे को रोने और रुलाने वाली बनती है?
कारण
नहीं पूछा, महावाक्य पूछा।
सब पुरुष दुनिया
का है, किसने बोला? हाथ उठाओ। हाँ अरे कुमार जो चाहे सो कर सकते, कुमार है क्या है? तो सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है, और यहाँ तो देखने में आता है पुरुष भी बहुत बैठे हैं, तो ये बात स्वीकार क्यों नहीं करते? है?
करते हैं
ना। हाँ चलो, अभी तो पता नहीं है कि असल में राम वाली आत्मा कौन है। जो होगी
वो इस सत्य को स्वीकार करती होगी या नहीं
कि राम ही रावण बनता है, भले कोई दूसरे स्वीकार करें या न करें। जैसे ब्रह्मा बाबा सबको सुख दिया या कोई ने ब्रह्मा बाबा से दुख अनुभव किया प्रैक्टिकल जीवन में? सबने सुख अनुभव किया। ब्रह्मा बाबा को कोई ने सुख दिया हो या न दिया हो, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने सबको सुख ही दिया। ब्रह्मा बाबा ने दिया या ब्रह्मा के द्वारा सुप्रीम सोल ने दिया? सुप्रीम सोल ने दिया, क्योंकि सुप्रीम सोल पार्ट बजा रहा है इसलिए सुखदाता है। ब्रह्मा भी भले दाढ़ी मूछ वाला भिखारी भी है, फिर भी क्या है? प्रैक्टिकल में सुख देने वाला साबित हुआ। नहीं तो 63 जन्मों में भी तो ब्रह्मा की आत्मा थी या नहीं थी? है कभी कोई आत्मा 63 जन्मों में हिस्ट्री में ऐसी साबित हुई जिसने सुख ही सुख दिया हो, दुख न दिया हो? है नहीं हुई। तो इस दुनिया में सब तरह के मिसाल मौजूद है। साबित ये हुआ कि एक आत्मा ऐसी भी है इस दुनिया में, मनुष्य आत्मा, जो दुनिया में सबसे जास्ती दुखदाई बनती है। कब? जब इस सृष्टि की महामृत्यु का टाइम होता है। तो विनाशकारी गाया जाता है, विनाश का जो टाइटल है वो उसके ऊपर रख दिया गया। किसके ऊपर है? हाँ, शिव की तीन मूर्तियां, उनमें शंकर के ऊपर है ये टाइटल रखा हुआ है, विनाशकारी। परंतु क्या शंकर विनाश करता है? करता है?
नहीं करता है।
एक एक का गला काटता है?
नहीं करता है।
गला काटना माने क्या?
देवान
है, देवान अलग कर देना, और आत्मा को अलग करके अपने पक्ष में ले लेना। तो महाकाली क्या करती है? गले काटती जाती है, देह को फेंक देती है, और मुंड को मुंडमाला बनाई लेती है। बनाती है कि नहीं? बनाती है। और इसके अलावा ब्रह्मा की हजार भुजाएं जो गाई हुई है या नहीं? हजार भुजा का ब्रह्मा अभी भी प्रैक्टिकल में कार्य करता है या नहीं करता है? तो उसकी हजार सहयोगी रूप में मानी जाने वाली भुजाओं को भी काट देती है। क्या? उन सहयोगी भुजाओं को भी काट देती है, और काट करके अपनी कमर की लज्जा छुपा लेती है। सहयोगी जो भगवान की भुजाएं थी, उन भुजाओं के द्वारा अपनी कमर की लज्जा छुपा लेती है, और क्या करती है? और भगवान बाप से विपरीत बुद्धि बनाई देती है। इतना विपरीत बुद्धि बनाती है कि वो जो सहयोगी आत्माएं थी वो मन से, वचन से, कर्मेंद्रियों से, कर्म से ऐसा पार्ट बजाती हैं कि भगवान का नाम क्या कर देती हैं, बदनाम कर देती हैं। महाकाली की कमर की लज्जा तो बच जाती है, लेकिन भगवान का नाम बदनाम हो जाता है। बद अच्छा, बदनाम बुरा, क्या कहते हैं है? दुनिया की नजर में कौन अच्छा? जो बद है वो अच्छा और जो बदनाम है वो बुरा। तो सबसे जास्ती बदनामी ग्लानी इस दुनिया में किसकी होती है? है भगवान की होती है। ग्लानी भगवान की होती है। भगवान कृष्ण को कहा जाता है दुनिया में भक्ति मार्ग में। भगवान राम को कहा जाता है। भगवान शंकर को कहा जाता है। ग्लानी साकार की होती है या निराकार की होती है? साकार की होती है। माने प्रैक्टिकल में जिसने बड़े से बड़े भगवान का पार्ट बजाया होगा, उसकी बड़े से बड़ी ग्लानी होती है। और बाबा ने क्या कहा ग्लानी के बारे में? ऐ
कलंक के डर के पीछे तो कुछ का भी होते
हैं।
कलंक के डर के पीछे कुछ का होते
हैं। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। कैसे?
निंदा जो करे वो हमारा मित्र।
हरे निंदा कोई करता है आमने सामने आकर या पीछे से तो गुस्सा आता है या मित्र पसंद महसूस होता है? है गुस्सा आता है, वो हमारा मित्र हो जाता है। ऐसा किसी ने अनुभव किया है?
नहीं किया।
तो अज्ञानी है या ज्ञानी है? निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो, ये किसके महावाक्य हैं? है ऊंचे ते ऊंचे भगवंत के महावाक्य हैं, भगवान के महावाक्य हैं। ब्रह्म वाक्य कहा जाता है, वेद वाक्य कहा जाता है। वेद की वाणी भक्ति मार्ग में पत्थर की लकीर मानी जाती है, तो झूठी तो नहीं हो सकती। परंतु ऐसी वाणी को भी कोई प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव नहीं कर रहा है। क्या वाणी? कौन सा महावाक्य? अरे निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। अरे इतनी बड़ी दुनिया में हर तरह का पार्ट बजाने वाली आत्मा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? है तो ऐसा पार्ट बजाने वाली कोई आत्मा नहीं होती जो अनुभव करे कि निंदा हमारी जो करें मित्र हमारे सोए। ये बुद्धि में ज्ञान होना चाहिए कि जो आज निंदा करते हैं वो कल हमारा गायन भी करेंगे। आज ग्लानि के पात्र बनते हैं, कल गायन करने के पात्र भी बन जाएंगे। जैसे अखबार वालों के लिए बोला, अखबार वाले तुम्हारी बहुत निंदा करते हैं, है? तो बताया कि अखबार वाले निंदा करते हैं, भू भू करते हैं, क्या करते हैं, भू भू, तो क्या करो, क्या करो, है? कोर्ट में केस कर दो, नहीं, क्या करो, है? क्या करो, उनको भू भू करने दो, तुम कुछ भी ना करो, क्या तुम कुछ भी प्रत्युत्तर न दो, तो ऐसा तो वो ही करेगा जो इस रहस्य को जानता हो, हमेशा याद रखता हो, क्या कि जो हमारी ग्लानी करते हैं वो ही हमारी गायन करेंगे, करना ही पड़ेगा। तो ज्ञान की पराकाष्ठा होनी चाहिए, हर बात में पराकाष्ठा होनी चाहिए। ज्ञान की पराकाष्ठा न होने से पास होंगे 100% या फेल हो जाएंगे, परसेंटेज में फेल जरूर हो जाएंगे। तो एक ही आत्मा निकलती है माया के युद्ध में, माया के फाइनल पेपर में पास होने वाली। ऐसे नहीं समझ लेना कि 76 में एक आत्मा निकली जो माया के फाइनल पेपर में पास हो गई, है? उस समय की बात है, है? नहीं, उस समय तो एडवांस ज्ञान की शुरुआत होती है। ऊंची पढ़ाई की शुरुआत होती है, फाइनल पेपर कैसे हो जाएगा? जब ऊंची पढ़ाई के बारे में सुप्रीम सोल के ही महावाक्य लागू हो कि मेरे पास जो कुछ भी था ज्ञान का, सच्चाई का भंडार, वो सारा तुम बच्चों को दे दिया, लेने वालों ने नंबर वार लिया और न लेने वालों ने नहीं लिया। जो सारा ज्ञान का भंडार लेता है उसका इस जड़ दुनिया में भी उदाहरण है। जड़ दुनिया में क्या उदाहरण है? जिसके लिए गायन है, गीत बनाए हुए हैं। क्या गीत बनाए हैं? नहीं, गीत बनाए हैं उनका अर्थ है कि रतन भी उसमें है और कीचड़ भी भरा हुआ है। क्या उसमें कीचड़ का भी भंडार भरा पड़ा है? नदियों ने ही वो कीचड़ सारी दुनिया से इकट्ठा करके उसमें डाला हुआ है। किसने डाला हुआ है? किसने डाला हुआ है? नदियों ने, हाँ। और उसने उस सारे कीचड़ को अपने अंदर समा लिया। कौन? सागर। कीचड़ और रतन दोनों हैं सागर में एक साथ। ऐसे गीत बनाए ना, ये संसार की इच्छा है कि वो जुलानी रूपी कीच अवगाहन करता है या रत्नों की खोज करता है? है कोई सागर में से कीचड़ ही कीचड़ उठा रहे हैं और कोई रत्न उठा रहे हैं। सागर में है दोनों चीजें। तो देखो ये ज्ञान सागर है, उसका उत्कृष्ट नमूना जो पारदर्शी कहा जाता है, ऐसा पारदर्शी को उस ज्ञान मान सरोवर में देखा जाए, हवा न चलती हो, जल ठहरा हुआ हो तो बॉटम भी दिखाई पड़ता है। वहां देह अभिमान की धूल का एक कण भी नहीं होता। ऐसी ऊंचाई पर दिखाया गया है, ऐसी ऊंची स्टेज बनती है। तो यहां के पुरुषार्थ की बात है, चैतन्य ज्ञान सागर की बात है कि उसमें विषय विकार रूपी कीचड़ भी भरा हुआ है और ज्ञान रतन भी जो भगवान की देन है। एक ही ऊंचे ते ऊंचे भगवंत बाप की देन है, ऊंचे ते ऊंचे बाप का वर्षा है। वो 100% वर्षा वो बाप का एक ही बच्चा है। कौन सा, बड़ा छोटा या मध्यम? जो परंपरा आज तक भी दुनिया में चली आ रही है सभी बापों के बीच में, क्या दुनिया का हर एक बाप अपने बड़े बच्चे को क्या देता है? हाँ, अपना सारा वर्षा सौंपता है। और बड़ा बच्चा भारत में खास बड़ा बच्चा बाप समान कहा जाता है, क्या बाप नहीं बाप समान कहा जाता है। वो परंपरा कहाँ से शुरू हुई है? युग से नहीं, कौन सी आत्मा से शुरू हुई? कौन सी आत्मा ने है ये परंपरा डाली है? मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसने ये परंपरा तो डाली, लेकिन उसने भी ज्ञान के आधार पर डाली। उसके अंदर ज्ञान भरा हुआ है कि ऊंचे ते ऊंचा भगवंत जो ऊंचे ते ऊंची पावर ज्ञान का भंडार है, उस भंडार के वर्षे का दाता है। वो भंडार का वर्षा आत्माओं का बाप देता है। कौन सा वर्षा है? भंडार का वर्षा, ज्ञान भंडार का वर्षा बाप देता है। माना वो ऐसा बाप है जिसने ये शुरुआत की परंपरा की कि कोई भी बाप हो दुनिया का, वो अपने बड़े बच्चे को ही सारा वर्षा सौंपता है। इसलिए गीता में कहा है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यापार्थ सर्वस, वर्तमान माने रास्ता, मेरे रास्ते का सारी दुनिया अनुगमन करती है। मैंने ये रास्ता बनाया, क्या रास्ता, कि हर बाप अपने बड़े बच्चे को अपना सारा वर्षा सौंप दे। परंपरा बनाई तो ये तो भक्ति मार्ग हो गया। भक्ति मार्ग में परंपरा निभाते हैं या ज्ञान मार्ग में परंपरा निभाना चाहिए? भक्ति मार्ग में परंपरा निभाते हैं तो भक्ति मार्ग के भक्तों में और भगवान में क्या फर्क रहा? अरे फर्क रहा, अरे भगवान भी वो ही काम करता है, ऊंचे से ऊंचा भगवंत कहा जाता है, और दुनिया के भक्त भी वो ही काम करते हैं। बताओ, दुनिया के भगवंत छोटे बड़े जो देवताएं हैं वो भी वही काम करते हैं। सतयुग का नारायण अपने बच्चे को, बच्ची को नहीं देता, किसको देता है? बड़े बच्चे को देता है वर्षा। दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां नारायण अपने बड़े बच्चे को वर्षा देता है, बच्ची को देता है या कोई और को देता है? है? तो देवयोनि में भी यही चलता है और दैत्योनि में भी यही चलता है। तो भगवान भी भक्त हो गया ना? है? नहीं, कारण बताओ।
भगवान दान के करते हैं, भगवान दान के करते हैं,
भगवान
जान कर करते,
जान कर करते, क्या जाना?
जो बड़े करते छोटे फॉलो करते।
अरे भगवान ने क्या ज्ञान जाना? कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान के आधार पर भगवान ने ऐसी परंपरा बना दी कि सारी दुनिया के लोग उस परंपरा को फॉलो करें? सत्य,
उसे
क्या सच्चाई है उसमें, परंपरा में? अरे प्योरिटी की सच्चाई, क्या सच्चाई प्योरिटी की?
जब लंबे समय का प्योरिटी का,
हाँ, जिस बच्चे में लंबे समय की प्योरिटी समाई हुई है, माता ने लंबे समय की प्योरिटी धारण की, पिता ने भी लंबे समय की प्योरिटी की पावर धारण की, दोनों ने मिलकर के प्रवृत्ति मार्ग में उस बच्चे को प्रत्यक्षता रूपी जन्म दिया। जन्म लेते ही बच्चा बाप के वर्षे का अधिकारी बन जाता है। तो ये कारण है, कारण के आधार पर भगवान ने परंपरा बनाई। और भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? क्या भगवान ने भक्ति मार्ग में कारण को जान करके परंपरा का अनुगमन करते हैं या कारण को बिना जाने ही परंपरा अंधश्रद्धा से अनुगमन करते रहते हैं? जैसे शास्त्रों में एक कथा आती है, एक परिवार था, उसमें बूढ़ी माता थी, कोई बड़ा भोज हुआ परिवार में, भोजन बनाया गया, पूड़ियां तली गईं, परंतु पूड़ियां तलने से पहले ही तेल के घी के भरे कढ़ाव में किसी तरह ऊपर से एक बिल्ली कूद पड़ी और वो जल गई। बुढ़िया ने देखा कि कोई नहीं देख रहा है, फटाक से बिल्ली को निकाल के टोकरे में दबा दिया। बुढ़िया ने जाना ही नहीं कि बहू देख रही है कहीं कहीं खड़ी खड़ी। तो बहू ने देखा तो जितने भी भोज हुए आगे, बहू यही धंधा करती रही, क्या एक बिल्ली को पकड़ करके टोकरे में बंद करके रखा और जब भोज हुआ तो बिल्ली को पकड़ के कढ़ाव में डाला, कढ़ाव में से निकाल करके फिर टोकरी में दबा दिया। क्योंकि ये नियम बना हुआ है, जैसा कर्म बड़े करेंगे, बड़े को देख करके छोटी भी करेंगे, तो उसने किया। तो कारण जान करके किया या बिना कारण के किया? कारण जाना ही नहीं और काम किया, परंपरा का अनुगमन किया। तो भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा से करते हैं और ज्ञान मार्ग में अंधश्रद्धा की कोई जगह नहीं है। यहाँ श्रद्धा विश्वास की तो जगह है, लेकिन अंधश्रद्धा और अंधविश्वास की ज्ञान में कोई जगह नहीं। भगवान अंधश्रद्धा और अंधविश्वास नहीं सिखाता। तो बताया कि जब महामृत्यु का समय आता है तो वो जो बड़ा बच्चा है बाप समान है, वो इस संसार के सभी अत्याचारियों का, राक्षसी कर्म करने वालों का विनाश कराने के निमित्त बन जाता है। क्या खुद विनाश करता है? है? जैसे कोई राज्य में राजा फांसी पर चढ़ाता है? नहीं चढ़ाता, वो सिर्फ ऑर्डर देता है, चलो वो राजा है तो फिर भी मुख से ऑर्डर देते हैं, क्योंकि मुख भी शरीर की क्या है, अंग है, इंद्रिय है। तो इंद्रियों से पाप कर्म करेंगे तो पाप बनेगा या नहीं?
बनेगा।
और 10 इंद्रियों से पाप ही नहीं किया और मन को एकाग्र करके ऐसा सशक्त वाइब्रेशन बना दिया, तो उस वाइब्रेशन को धारण करके कोई भी मनुष्य आत्मा को प्रभावित कर सकते हैं। क्या नहीं समझ में आया है? हाँ, तो वो वाइब्रेशन जो योग बल से तैयार किया जाता है वो दुनिया की सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है। जिस वाइब्रेशन का कार्य लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया गया, लक्ष्मी नारायण एक दूसरे को देख रहे हैं इंद्रियों से, ज्ञानेन्द्रियों से भी देख रहे हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञानेन्द्रिय आंख से भी नहीं देख रहे, तो उनमें एक दूसरे के प्रति प्यार है या नहीं है? है? अरे कुछ भी तो दिखाई नहीं देता कि एक दूसरे से प्यार है या नहीं, दिखाई देता है? है? नहीं दिखाई देता। तो भी प्यार तो जरूर है। कौन से लक्ष्मी नारायण में? संगम युग में भगवान ने जिनको नर से डायरेक्ट नारायण बनाया, वो नारायण मन की एकाग्रता के आधार पर शिव नहीं कौन नारायण वाइब्रेशन बनाता है। क्यों शिव क्यों नहीं बनाता? अरे अरे शिव को मन मन है ही नहीं। शिव तो रथ का आधार लेता है, जैसे कोई माइक का आधार लेता है तो आवाज दूर दूर तक पहुंचती है, ऐसे ही भगवान सिर्फ रथ का आधार लेता है। क्या किस लिए? रथ की इंद्रियों के द्वारा कार्य करा सके। कार्य इंद्रियों के द्वारा होगा या बिना इंद्रियों के द्वारा होगा? इंद्रियों के द्वारा कार्य होता है। तो इंद्रियां कार्य करती है, मन कार्य नहीं करता है। मन कार्य कराता है इंद्रियों से या करता है? कराता है। मन अकरता है या करता है? है करता तो है, लेकिन बाबा कहते हैं शंकर क्या करता? कुछ भी नहीं। झूठ कहते हैं है? शंकर कुछ भी नहीं करता, माने इंद्रियों से कोई कार्य नहीं करता। जो कार्य कारिणी है वो इंद्रियां हैं। शिव कार्य नहीं करता, वो भी करता है। अकरता है कि करता है? है शिव भी अकरता, और इस सृष्टि पर आकर के वो निराकार शिव निराकार आत्माओं को आप समान बना कर जाता है या नहीं बनाता? है बनाता है। तो कोई आत्मा 100% आकर्ता बनती होगी या नहीं बनती होगी? है एक आत्मा है जो बाप समान बनती 100%, इसीलिए उस स्वरूप का गायन और पूजन है संसार में। नहीं तो जो सुप्रीम सोल शिव है वो तो कहता है मैं न पूज्य बनता हूं न मैं पुजारी बनता हूं। माना वो ज्योति बिंदु जो सदा करता है करावन हार है या नहीं? है करावन हार है। तो 80 साल में किसी के द्वारा कराया है? अरे एक तरफ कहता है मैं आता हूँ तो एक सेकंड में दक्ष से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूँ, नहीं, और दूसरी तरफ 80 साल हो गए, क्या 80 साल कम नहीं होते हैं? 80 साल हो गए, किसी को निर्विकारी नहीं बनाया, बनाया या नहीं बनाया है, तो करता है या नहीं करता है, करता है, 80 साल में नहीं किया तो भी करता है, अरे करता है, जबरदस्ती करता है, अस्सी साल में किसी को निर्विकारी किया आत्मा को, फिर किस लिए आता है, अरे कोई कारण से आता है कि ऐसे ही आ जाता है, आया राम गया राम, जैसे धर्म पिताएं आते हैं, आया राम गया राम, दुनिया की उन्नति कुछ भी होते ही नहीं, दुनिया और ही विकारी बनती जाती है, और ही कीचड़ में गिरती जाती है। सुप्रीम सोल शिव बाप तो ऐसा नहीं है, है है नहीं है, तो क्या करके जाता है, अरे
पुरानी दुनिया को नई दुनिया
80 साल में बना दिया, मैं 80 साल में नहीं बनाया, अब बनाए रहे हैं, राज्य कौन करेगा, नहीं खालसा तो करेगा, लेकिन राजा राज्य करेगा या जिसमें दास दासी के संस्कार हैं, चांडाल के संस्कार हैं, धंधा धोरी करने के संस्कार हैं, दुनियावी धंधा धोरी, पेट का धंधा, वो राजा ही करेगा, राजा राज्य करेगा, है राजा नहीं करता राज्य, राजा ही तो राज्य करता है, लेकिन कब करता है, राजा होने के बाद, और राजा कैसे बनता है, हिस्ट्री में राजा कैसे बने, है क्या किया, हाँ पहले लड़ाई फिर राजाई, अब वो लड़ाई चाहे स्थूल में हो और चाहे वो लड़ाई सूक्ष्म में हो, माया की लड़ाई, लड़ाई तो जरूर करनी पड़ेगी, और सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है कि स्थूल में, सूक्ष्म में ज्यादा ताकत, तो सूक्ष्म जो विकारों की लड़ाई है, काम क्रोध लोभ मोह की लड़ाई है, वो बड़े से बड़ी लड़ाई है, उस लड़ाई का नाम पड़ा है महाभारी महाभारत युद्ध, जिस युद्ध में भगवान ने गीता ज्ञान सुनाया, जिस गीता ज्ञान में बड़े से बड़ा शत्रु कौन बताया, काम और क्रोध, कामेश क्रोधेश, ये महाशत्रु हैं, इनको जीत ले तो दुनिया का तू बड़े से बड़ा राजा बन सकता है, इंद्रिय जीते जगत जी, काम जीते जगत जी, तो दुनिया में कौन सा देवता है जिसने इंद्रिय को जीता, महाकाली बैठ गई है, हाँ एक ही देवता गाया हुए है जिसने काम को भस्म किया, एक ही देवता है जिसने जो बड़े से बड़ा दुनिया का चोर डकैत लफंगा है उसको कंट्रोल किया। भस्म कर दिया। कौन? बड़े से बड़ा चोर डकैत कौन है? कामदेव। कामना, इच्छा। कैसे भस्म किया? युगबल माना किसकी याद? लड्डू, पेड़ा, जलेबी, मकान, दुकान, राजाई, किसकी? हाँ, वो बाप जो न राजा बनता है। बनता है?
नहीं बनता है।
वो राजा भी नहीं बनता। वो प्रजा भी नहीं बनता। राजा बनाता है। क्या बनाता है? राजा बनाता है। किस आधार पर है? है? राजा बनने का आधार क्या है? राजयोग। राजयोग की पढ़ाई राजा बनने का आधार है। जो राजयोग की पढ़ाई पढ़ेगा, सिर्फ पढ़ेगा या प्रैक्टिकल में करके दिखाएगा? है, दुनिया में भी ऐसे ही हुआ है। कोई भी पढ़ाई होती है, थ्योरी थ्योरी किसी ने पढ़ ली, अब प्रैक्टिकल में फेल है। LLB पास कर लिया और प्रैक्टिकल में किसी वकील के नीचे काम करना शुरू किया तो जीरो। MBBS पास कर लिया, थ्योरी तो हो कर ली पास, लेकिन कोई हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर के नीचे काम किया तो जो भी मरीज आया मर गया, फेल। तो पास कहा जाएगा है? नहीं कहा जाएगा। तो रावण कैसा था? ज्ञानी। ब्राह्मण तो था, बड़ा पंडित माना जाता था, था कि नहीं? ज्ञानी माने जानकार, भगवान को भी जानता था या नहीं जानता था?
जानता
था, लेकिन अहंकार के कारण, देहंकार के कारण जानते हुए भी ना, मैं मान नहीं सकता ये भगवान है। जब तक मेरे से युद्ध करके जीत न जाए तब तक मैं मान नहीं सकता, क्योंकि उसके पास दुनिया का मान मर्तबा था, उसके पास दुनियावी ज्ञान भी था, उसके पास मेलमारियां अटारियां भी थी, उसके पास बड़ी बड़ी सेनाएं भी थी, और सेनाओं में भी बुद्धिमान मनुष्यों की सेना थी या जानवरों की सेना थी? मनुष्यों की सेना थी। और उसका रथ भी लंबा चौड़ा डील डॉल वाला था या नहीं था? है? पर्सनालिटी हल्की फुल्की थी या ग्रैंड पर्सनालिटी थे? तो कहता था कि मेरे से जीत के दिखाओ मान मर्तबे में, तब मैं मानूंगा। धन धान्य संपत्ति में मेरे से जीत के दिखाओ, दुनियावी सत्ता के आधार पर मेरे से जीत के दिखाओ, धन दौलत के आधार पर मेरे से जीत के दिखाओ। मेरा राज्य सोने की लंका में चलता है। कैसी लंका? सोने की लंका। सोना तो बहुत कीमती होता है। तो बड़ा अहंकार था। और राम के पास ये सारी चीजें थी नहीं थी, तो उसने माना नहीं। और दुनिया का बड़े से बड़ा रावण कौन? अरे जल्दी बताओ। है देवान कोई आत्मा होती है? है ब्रह्मा देवान। अरे ब्रह्मा को गधा कहो तो भी अच्छा, देवान क्यों कह दिया? है अरे इस दुनिया में गधों का बाप आया हुआ है कि नहीं? तो गधों का बाप बड़ा गधा या पांच विकारों का बाप जो रावण के सिर पर दिखाया जाता है वो बड़ा गधा है? बड़ा गधा कौन हुआ? बाप गधा, बड़ा गधा हुआ ना? है बाबा बोलते भी हैं, बच्चों को इशारा देते हैं। कोई बाप होते हैं दुनिया में अपने बच्चों को कहते हैं, हे गधे के बच्चे, तो बच्चा पूछता है बाबा मैं गधे का बच्चा तो आप क्या हुए? है बड़े से बड़ा गधा हुए कि नहीं परिवार के? है तो ये वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक बड़े से बड़ा परिवार बनती है। उस परिवार में जो पहला पत्ता है वो अगर गधा बन गया, किस आधार पर? है बुद्धि के आधार पर गधा बन गया तो सारा परिवार क्या होगा? है पहला पत्ता ही गधा तो 500-700 करोड़ पत्ते क्या हो जाएंगे? गधे ही हो गए ना। तो राम वाली आत्मा बड़े से बड़ा गधा जिसका मिसाल देह अभिमान से दिया जाता है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से दिया जाता है? है देह अहंकार से दिया जाता है। ऐसा देह अहंकार जो बाप को 80 साल हो गए बोलते बोलते, क्या अमृत छोड़ विष काहे को खाए? राम जी भाई नीचे तो सर करके क्यों हंस रहे? तो वो गधा इस बात को समझ पाता है। 500 करोड़ मनुष्य आत्में जब तक इस सृष्टि पर रहती हैं, तब तक भी समझ पाता है? है नहीं समझ पाता, क्योंकि वो मनुष्य सृष्टि का बाप है। सच्चा बाप है या झूठा बाप है? सच्चा बाप है। जो सच्चा बाप होगा परिवार के बच्चे घर परिवार में जोर से आग लग गई, चारों ओर से आग लग गई, तो हर बच्चे को निकालने की कोशिश करेगा या भाग जाएगा? अगर दो चार बच्चों को छोड़ के चला जाए तो सच्चा बाप या झूठा बाप है? झूठा बाप है। और ये सारी मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, जिसको ऊंचे से ऊंचा भगवंत जो आत्मा कही जाती है, वो चुनता है। कौन चुनता है? है ऊंचे से ऊंची आत्मा कौन? वो बाप जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत कहा जाता है। ऊंचे से ऊंचा का क्या मतलब? ऊंचे ढेर और उन सबसे ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा। बताओ इस सृष्टि में ग्रेट फादर्स कौन है? धर्म पिता है। और वो धर्म पिताओं का भी बाप जो इस्लाम में और क्रिश्चियंस में भी गाया हुआ है, इस्लामी कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन, अव्वल माने पहला नंबर, दीन माने धर्म, उसकी स्थापना करने वाला कौन? अल्लाह, ऊंचे थे ऊंचा। क्रिश्चियंस भी कहते हैं हेवनली गॉड फादर, किस आधार पर है? क्या करता है? अरे हेवन स्थापन करता है। जो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट ग्रेट फादर्स हेवन स्थापन नहीं कर पाते और ही दुनिया को नरक बना के जाते हैं। तो वो ऊंचे थे ऊंचा बाप को याद करते हैं। अब बताओ 500-700 करोड़ दुनिया जब महाविनाश में कहो, महामृत्यु के समय कहो, शरीर छोड़ेगी किस आत्मा को याद करेगी?
मनुष्य सृष्टि के बाप को, शंकर
को। बताओ बताओ,
मनुष्य सृष्टि के बाप शंकर,
लिंग को याद करके
शंकर को,
शिव बाप को याद करेगी ना? शिव बाप को याद करेगी ना? हाँ, शिव बाप को याद करेगी। शिव बाप निराकार या साकार? निराकार को याद करना सहज या साकार को याद करना सहज? है साकार को याद करना सहज। क्यों? कारण बताओ।
है?
क्योंकि 63 जन्म हमें इस सृष्टि पर नंबरवार कौन सा बाप संघ के रंग में आया? मनुष्य सृष्टि का बाप इस सृष्टि में संघ के रंग में नंबरवार आता जरूर है। तो साकार है या निराकार? साकार है। तो पूर्व जन्मों का जो संस्कार है वो इस लास्ट जन्म में आता है या नहीं आता है? आता है, इसलिए साकार को याद करना सहज है, निराकार को याद करना कठिन है। अच्छा पक्का अनुभव बताओ, अमृत वेले जब याद में बैठते हैं तो 80 साल हो गए निराकार ज्योतिबिंदु आत्माओं के बाप को, ज्योतिबिंदु को याद करते करते, प्रैक्टिस करते करते, अमृत वेले की याद में ज्यादा देर तक निराकार ज्योतिबिंदु याद आता है या साकार याद आता है? कोई का अनुभव हो कि 80 साल के अंदर छोड़ो, 8 साल से हम ज्ञान में आए, 8 साल में नहीं आए, 4 साल में आए, लेकिन हमें तो निराकार ज्यादा याद आता है। हाथ उठा दो, खींचो खींचो, कोई नहीं, 80 साल में भी कोई नहीं,
टिकाई नहीं जाता है,
टिकाई
नहीं जाता,
साकार नहीं जाता। हाँ, अब फाइनल पेपर होने में कितना टाइम रह गया? सर ना खुजलाओ, ऐ बता दिया, 40 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में, कम से कम। तो कोई बच्चा होगा ना अव्वल नंबर, जो 40 वर्ष पूरे होते हैं, 1977 संपूर्णता वर्ष, और 40 वर्ष जोड़ दिए तो 2017 के बाद वो 40 वर्ष पूरे होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। तो बाप समान स्टेज को कोई धारण करेगा या नहीं करेगा? कौन धारण करेगा? जिसने सुप्रीम सोल बाप, आत्माओं के बाप का पूरा वर्षा धारण किया होगा, 100% वर्षा धारण किया होगा, ज्ञान का वर्षा, निराकार बाप से निराकार वर्षा धारण किया होगा, वो 100% पास होगा कि कोई दूसरा पास होगा? है हाँ, और थ्योरी में पास होने की बात है या प्रैक्टिकल याद में भी पास होने की बात है? क्योंकि शिव बाप योगी नहीं है, वो योग लगाता है, है? योग नहीं लगाता, वो योगी नहीं है। अरे शिव बाप योगी नहीं है, है? अरे एक जन्म के लिए योगी है कि नहीं है?
शिव बाबा योगी
है,
शिव बाप तो योगी नहीं
है। हाँ, जिसमें प्रवेश करता है तो शिव बाबा कहा जाता है, साकार निराकार के मेल को शिव बाबा कहा जाता है, और वो भी शिव बाबा तब कहा जाता है कि जिसमें प्रवेश करता है वो ज्ञान की प्राप्ति के आधार पर, ज्ञान का अर्जन करने के आधार पर, ज्ञान का अध्ययन अध्यापन करने के आधार पर संपूर्ण बनता है। कि बीच में ही संपूर्ण बन जाता है, है? ज्ञान संपूर्ण धारण करे थ्योरी में भी, और थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल में, और चारों सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में 100% पास तो पास, और फेल तो फेल, चाहे तीनों सब्जेक्ट में 100% पास हो लेकिन एक याद के सब्जेक्ट में फेल तो फेल कहा जाता है। तो एक आत्मा जब तक संपूर्ण योगी बने योग लगाकर, किसके साथ योग लगाकर? है शिव बाप के साथ योग लगाकर, शिव बाप के साथ योग लगाएगा तो निराकार प्रेमी हुआ या साकार प्रेमी हुआ? है निराकार प्रेमी हुआ। मुरली में कोई महावाक्य है निराकार प्रेमी के लिए जिससे साबित हो कि वो एक ही है जो संपूर्ण निराकार प्रेमी बनता है?
मेरा बिंदी का नाम शिव है।
अब वो तो बिंदी का नाम शिव है। बिंदी को प्यार करने वाला कोई ऐसा महावाक्य है कि एक ही है जो सिर्फ बिंदी को प्यार करता है और कोई देहधारी को प्यार नहीं करता है? 63 जन्मों में सबसे छक गया और इस लास्ट जन्म में भी सबसे सबके संसर्ग संपर्क में आकर के क्या अनुभव कर लिया? सब झूठे हैं, धोखेबाज हैं या आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार ईमानदार हैं? हाँ जी, जो गीता में आया है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, सत्य का कभी अभाव नहीं होता है संसार में। तो कौन है सत्य? है एक ही आत्मा सत्य है जिसे धर्म पिताओं ने पहचाना, गॉड इज ट्रुथ और ट्रुथ इज गॉड। प्रैक्टिकल में या सिर्फ थ्योरी में, बोलने 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 में, समझने और समझाने में, प्रैक्टिकल जीवन में भी सत्य है। कैसा सत्य? 84 जन्मों में भी सृष्टि पर रहने वाला या एक दो जन्म इस सृष्टि पर न रहे तो आत्मा को सत्य कहेंगे कि असत्य कहेंगे? एक दो जन्म न रहे तो असत्य हो गई। उसका भाव कहाँ रहा इस दुनिया में? वो अविनाशी कहाँ रही इस दुनिया से? उसका विनाश हुआ आत्मा का या नहीं? है इस दुनिया से विनाश हो गया। तो पूरे 84 जन्म ऑलराउंड पार्टधारी जो है इस सृष्टि में, उसको धर्म पिताओं ने बाप माना। कब माना? जब निराकारी स्टेज को धारण कर लिया 100% तब माना या इससे पहले ही माना? है जब निराकारी स्टेज को संपूर्ण धारण कर लिया तब माना, उससे पहले नहीं माना। तो बताया कि वो जो एक सत्य है इस सृष्टि पर आत्मा, मनुष्य आत्मा, उस मनुष्य आत्मा के पार्ट को, जन्म जन्मांतर के पार्ट को कौन जानता है? कोई जानता है कि नहीं? है शिव, शिव बाबा नहीं, शिव बाप जानता है। उस जानकारी के आधार पर उस एक ही आत्मा को चुनता है। क्या? एक ही आत्मा को चुनता है और बोलता है क्या कि मैं आशिक बन करके आता हूँ। किसके ऊपर है? 500 करोड़ के ऊपर, 33 करोड़ के ऊपर, 4.5 लाख के ऊपर, 8 के ऊपर, 1 के ऊपर? क्यों? 8 भी तो सजाएं नहीं खाते, संपूर्ण आत्मा बनते हैं ना। उनके ऊपर क्यों नहीं?
एक दो सेकंड के लिए नीचे में जाते
हैं।
है? वो भी एक दो सेकंड में तो हम नीचे में जाते हैं।
क्या पता है एक दो सेकंड के लिए जाते हैं कि ज्यादा जाते हैं, आपने कैसे क्योंकि माया किसी को छोड़ती नहीं। इस दुनिया में सब रावण राज्य के बन जाते हैं, यथा राजा तथा प्रजा। कोई नहीं कह सकता कि हम राम राज्य में हैं। कोई हो तो हाथ उठाए। कोई है? अरे राम राज्य में कोई नहीं, राम को राजा कोई मानता ही नहीं।
अभी राज्य में नहीं है, ज्यादा
मानता है लेकिन जानता नहीं है। मानता है लेकिन जानता नहीं, जानता नहीं। अच्छा, दुनिया वाले कल पूछेंगे, कल तो तुम कहते थे हमें भगवान बाप मिल गए, हम भगवान को जानते हैं, आप भी आकर के जान लो। कल आप हमें निमंत्रण दे रहे थे, अभी कहते जानते ही नहीं।
जानते हैं, अभी तैयार हुआ
है? कौन तैयार हुआ?
नहीं, अभी हम रास्ता में है ना बाबा, जा रहा है नाम
जा रहा है।
अभी
रास्ता में,
अभी
रास्ता में है।
पुरुषार्थ की है।
कौन?
पुरुषार्थ करने के लिए रास्ता में है ना।
कौन?
राम वाली आत्मा।
राम वाली आत्मा पुरुषार्थ के रास्ते में है।
राम पुरुषार्थ के रास्ते में है बाबा।
मैंने अधूरे को मान लिया।
नहीं नहीं, हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे, हम पुरुषार्थ
कर रहा है, पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ।
पूरा नहीं हुआ? अच्छा, तो पूरा नहीं हुआ,
पूरा हुआ तो माया बाहर आने की नहीं।
रुको, पूरा ही नहीं हुआ तो ये क्यों कह दिया? याद करो उस महावाक्य को, क्या कह दिया?
नई दुनिया में आना जाना करते हो?
नहीं, नई दुनिया में तो आना जाना बहुत करते होंगे, क्योंकि नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ रहा है तो आना जाना भी करते होंगे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा फाउंडेशन पड़ेगा नंबर बार। लेकिन वो आत्मा जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर संपन्न तो नहीं बनी है, लेकिन उसके लिए बोला है
सदा कायम।
नहीं, सदा कायम भी हो, उसके लिए बोला है कि वो आत्मा एक ही है, जिसके लिए बोला तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आ गई, तो तेरी एक के लिए कहा, कहने वाले ने एक को देख करके कहा या दो चार को देख के कहा या सब को देख करके? तो इससे साबित हुआ कि कोई एक है जो सिर्फ निराकार प्रेमी है, और उसके साथ रहने वाला कोई साथी भी है, जिसके लिए भक्ति मार्ग में गायन होता है कि जहां जहां राम कथा होती है वहां वहां हनुमान जी जरूर विराज जाते हैं। कौन है हनुमान का पाठ बजाने वाली आत्मा? ब्रह्मा वाली आत्मा। वो एक ही आत्मा है, जहां कहीं भी ज्ञान सुनने सुनाने का काम होगा वो आत्मा जरूर आ जाती है। तो दो आत्माएं हैं जिनके लिए बोला क्या, बाप दादा चाहे तो अभी भी वापस परमधाम जा सकते हैं, बिना संपन्न स्टेज हुए है? संपन्न स्टेज पर नहीं बनी नहीं, उनके लिए बोल दिया कि 40 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में, तो क्यों कह दिया चाहे तो अभी भी वापस जा सकते हैं। कौन कौन आत्मा है? बाप दादा कौन?
राम और कृष्ण की आत्मा।
राम
और कृष्ण की आत्मा
और कृष्ण वाली आत्मा। वाह भैया, अरे कृष्ण वाली आत्मा 4.5 लाख पहले परमधाम पहुंचेंगे, परमधामी स्टेज में पहुंचेंगे। हाँ, अरे पिछले साल की अज्ञातवाणी में बता दिया कि बाप दादा जिनका स्मृति दिवस तुम मनाते हो वो 18 जनवरी नहीं है, वो बाप दादा असली नहीं है, क्योंकि तुम देहभान में रहते हो, अपन को देह समझते हो, तो देहधारी को तुमने बाप माना और देहधारी से जो बच्चा पैदा हुआ उसको तुमने पहला पत्ता दादा माना, बड़ा बच्चा। तो जिन्होंने माना बाप दादा रामकृष्ण को, वो देह की भान में स्थित हैं या आत्माभिमान में स्थित हैं? देहभान में स्थित होकर के बोलते हैं बाप दादा रामकृष्ण की आत्माओं को। नहीं तो वास्तव में अगर आत्माभिमानी बने हैं तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं आपस में भाई भाई, और उनका बड़ा भाई कौन? राम वाली आत्मा, जो बोला राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है, तो वो राम वाली आत्मा जो है वो दादा है या बाप है?
दादा।
क्या है? क्या है?
दादा है।
बाप दादा दोनों है राम वाली आत्मा।
दादा है।
क्या है?
दादा
है।
दादा है। दादा है। दादा
ये से देखने से वो बाबा है, आत्मा से देखने से वो दादा है।
अरे देह को तुम देखते हो तो तुम देह अभिमानी सांडे हम हो गए फिर देखने वाले।
बाप दादा देह के हिसाब से देखे तो राम की
फिर देह हिसाब। अरे वो हिसाब पैदा ही क्यों करते हो?
आत्मा के हिसाब से तो बाप दादा बोलने से तो शिव और राम का ही आत्मा है।
माना दोनों हिसाब लगाते हैं, दोनों हिसाब लगाना जरूरी है, है? जरूरी है?
नहीं है। बाप राम को कहा जाता है,
बाप बाप को कहा जाता है और दादा बड़े भाई को कहा जाता है, तो कौन हुआ दादा?
दादा।
अरे ये बात गले से उतरती नहीं है, अभी तक इतने साल हो गए 18 जनवरी से लेकर के अभी तक, इतने साल तक हम बाप दादा किसको मानते रहे? रामकृष्ण को मानते रहे, अब झट से पाला क्यों बदलते हो? है उस सारा ज्ञान को उल्टा करना है क्या? अरे 76 में तो ज्ञान को उल्टा कर ही दिया।
ये भी रास निकल आ रहा है ना, ये भी रास निकल आ रहा है ना।
तो आत्मिक हिसाब से, आत्मिक दृष्टि से कहें, क्योंकि ये हिसाब राम वाली आत्मा का है ना, आत्मिक दृष्टि और देहभान की दृष्टि, ये किसका हिसाब है? राम वाली आत्मा का। राम वाली आत्मा का देहभान का हिसाब क्यों है? राम वाली आत्मा 80 साल के अंदर अभी भी देहबान का हिसाब लगाती है। अरे अरे लंबे समय तक देहबान का भी हिसाब देहबान का ही हिसाब लगाता रहेगा कोई आत्मा, तो अंत समय में कौन सा भान धारण करेगा? देहबान भी आ जाएगा। फिर इस दुनिया का निस्तार होना है या नहीं होना है? इसलिए दयावान कहा कि राम वाली आत्मा ही देहबान का बीज रूप पुतला है। देहबान का इस मनुष्य सृष्टि में बीज कौन है? राम बाप। कब से देहबान का बीज है? अरे कोई टाइम है कि नहीं? 66 से देहबान का बीज है, है? उससे पहले देहबान का बीज नहीं था?
सृष्टि के आदि में भी था।
सृष्टि के आदि में भी था। अगर बीज न होता तो धोबी घाट की बात को लेकर के इतना जो बवंडर हुआ, उस बवंडर में वो आत्मा फेलियर की लिस्ट में गिनी जाती या उस बवंडर में भी पास हो जाती? पास हो जाती। फेल इसलिए हो गई भले कहा जाए कि उस समय पूरा ज्ञान नहीं था। अच्छा, उससे पहले सन 36 से पहले ज्ञान था क्या? वो देहबान का बीज नहीं थी। कब से थी फिर?
वो तो शुरू से ही।
शुरू माने कब से? माना जब से कृष्ण वाली आत्मा को जन्म दिया तब से। वहां तो बताया वहां देहबान में कोई होता ही नहीं। 2500 वर्ष तक कोई देहबान में नहीं रहता, तो राम वाली आत्मा कैसे शुरू से है?
उनको बोलना उठना नहीं।
क्या होती
नीचे से
दो कर रहती है उसके दिया भान को
खड़े नहीं होने।
अरे दुनिया में मर्ज को मानते हैं कि मर्ज को मानते हैं? है? हाँ, तो देहबान कब से इमर्ज हुआ? हाँ, अभी अभी ठिकाने पे आए। मुसलमान लोग भी मानते हैं, क्रिश्चियंस भी इस बात को मानते हैं कि अल्लाह मियाँ ने जब हेवन स्थापन किया, जन्नत बनाई, तो एडम ईव को ताकीद किया कि बॉडी के बीच का फल नहीं खाना। कई जन्मों तक सुख भोगते भोगते वो भूल गए और जब भूल गए तो देहबान में लाने की पहल किसने की है? जोर से बोलो ना। ईव ने की। क्या जो अब तक भी मुरलियों में गायन आ रहा है? क्या गायन आ रहा है? है? क्या गायन आ रहा है? अरे छोड़ भी दे आकाश सिंहासन आत्मिक स्थिति का, इस धरती पर आ जा रहे। किसने बुलाया पहले पहले? है? ईव ने बुलाया, माता ने बुलाया। और ईव है प्रकृति और बाप है प्रकृतिपति। तो जो पिता है वो माता की इच्छा पूरी करे या न करे?
करे
है?
करेगा
करेगा। अरे वो तो मनुष्य सृष्टि का बाप है, ये परंपरा चालू किसने की? कब की? आत्माओं के बाप ने परंपरा चालू की या मनुष्य सृष्टि के बाप ने परंपरा चालू की कि माता की इच्छा को भी तीव्र इच्छा है माता की तो पूरी करनी चाहिए क्या? ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई है?
द्वापर के आदि में।
हाँ, द्वापर के आदि में शुरू हुई, षष्ठी के आदि में नहीं है। भारत मातृ प्रधान देश है या पितृ प्रधान देश है? मातृ प्रधान देश है। माता ऐसी शक्ति है जिसके प्रभाव में सब पुरुष आ जाते हैं। गीत बनाई, कैसी बनाई तूने नारी के मारा गया ब्रह्मचारी। तो झूठा गीत बनाया या सच्चा बनाया है? सच्चा गीत है। तो ये परंपरा शुरू किसने की है? जगदम्बा ने शुरू की। माने शिव बाप परंपरा शुरू नहीं करता, वो बड़े से बड़ा भगवंत नहीं है, है? अभी से ही राम के भगत बन गए है? राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सब आंखों के अंधे। तो परंपरा कहाँ से शुरू होती है? संगम युग से या सतयुग या द्वापर से है? सब प्रकार की परंपराएं संगम से शुरू होती हैं। और शुरू करने वाला कौन?
शिव बाबा।
फिर वो ही शिव बाबा। सारी परंपराएं शिव बाबा शुरू करता है, साकार निराकार का मेल शुरू करता है।
साकार करता है।
हाँ, साकार करता है। निराकार साकार में आता है
वो बनाता है, लेकिन उसका नहीं वाला।
अच्छा, वो आता कैसे है? बुलाने वाला बुलाता है, इच्छा करता है तब आता है या बिना बुलाए आता है? प्रैक्टिकल प्रूफ है हिस्ट्री का। गांधी जी के साथ भारतवासियों ने, 40 करोड़ भारतवासियों ने एक साथ गुहार लगाई, पतित पावनाओ, तब आया या पहले ही आ गया 2500 वर्ष में है? बुलाता है तब आता है।
बुलाने से तो फिर बुलाएगी, बुलाने से मैं नहीं आता हूँ, फिर बुलाएगी, तुम पुकारते हो मेरे भक्त।
हाँ, तो बुलाना तो 35-36 से पहले नहीं हुआ, हुआ उस समय की बात नहीं है, और वास्तव में आया भी नहीं। बच्चा घर में तब आया हुआ माना जाता है जब पेट से गर्भ से बाहर आता है, दुनिया देखती है, उआ उआ सुनती है, तब बाहर आया माना जाता है, प्रत्यक्ष हुआ माना जाता है या पहले ही है? हाँ, तो वास्तव में न 36 में आया न 47 में आया प्रत्यक्ष रूप में, और न 76 में आया प्रत्यक्ष रूप में। कब आया है? कब आता है? जब घोर अज्ञान की रात्र होती है, महाशिवरात्रि, जिससे बड़ी कोई रात्रि होती ही नहीं, तब भगवान आता है। दुनिया तो अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई है, वो तो अज्ञान अंधकार से अब तक भी बाहर नहीं आई, उसकी बात छोड़ दो। वो ब्राह्मणों की दुनिया जो बेसिक ब्राह्मणों की बड़ी दुनिया हो गई है वो ब्राह्मण भी कहते हैं कि भगवान आ गया। उनसे पूछो कब आ गया, कैसे सन 36 में हो गया, आ गया। कौन सा जन्म दिवस मनाते हैं, कहते हैं 78वां जन्म दिवस मनाते हैं। सन 76 में कहा 40वां जन्म दिवस मनाया, तो आए या नहीं आए, हैं हैं, आए या नहीं आए, नहीं आए। राम वाली आत्मा आई, टीचर के रूप में आई, सुप्रीम सोल ने सुप्रीम पार्ट बजाया और सुप्रीम टीचर के रूप में, लेकिन वो फिर भी अभी तक गुप्त है या प्रत्यक्ष है? है, अगर गुप्त ना होता तो आज कहते हैं आया, हमने बाप को जाना, और कल क्या कहते है, नहीं आया, अनिश्चय बुद्धि हो जाते, बाप के बच्चे नहीं रहते, मर जाते, तो मृत्यु लोक में है या अमर लोक में है? और बाप कहते हैं मैं आता हूं, तो एक सेकंड में जनक को जीवन मुक्ति देता हूं, तो इसका मतलब अभी आया नहीं प्रैक्टिकल में, और वाणी में प्रूफ भी दे दिया। क्या प्रूफ दिया, जो इन आंखों से देखे, जो इन कानों से दो शब्द भी सुने, उसके मुख से क्या निकले, मेरा बाप आ गया, कोई माने या न माने, और एवरलास्टिंग बाप आ गया। ऐसे नहीं आज आ गया और कल मैं कह दूं कि नहीं आया, आ गया और हम अब मृत्युलोक के वासी नहीं हैं, हम अमर लोक के वासी हो गए, अमरनाथ के बच्चे हो गए, तब कहेंगे आया। तो बाप आया तो, लेकिन रथ में आया, रथ का उपयोग किया या आत्मा में आ गया, है रथ में आया। रथ जो है पांच तत्वों का पुतला है, शव है या शिव है, है शव है, तो अपन को देखना है कि हम शव को ज्यादा याद करते हैं या शिव को ज्यादा याद करते हैं, या शव और शिव दोनों के मेल को ज्यादा याद करते हैं, है मेल को ज्यादा याद करते हैं। दिल पे हाथ रख के कहो, पक्का पक्का कहो, पक्का है, अभी परीक्षा होने वाली है फाइनल, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो शब में आया हुआ है, किस में आया हुआ है, इसीलिए मुसलमान लोग क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि सभी आत्माएं जो भी रूह हैं वो कब्र दाखिल है, क्योंकि जो रूहों का बाप है सुप्रीम सोल वो भी कब्र दाखिल हुआ पड़ा है, उसमें आता है, कब्र से निकालने के लिए आता है, या कब्र में ही रखता है 80 साल, है
80 साल तो कब्र में ही रखता है,
अभी भी कब्र में है, कब्र दाखिल है माना मिट्टी है, पत्थर है, पत्थर बुद्धि है या नहीं है, सर न खुजला पत्थर बुद्धि है या नहीं है? है पत्थर बुद्धि है, इसीलिए तो बाप कहता है सुप्रीम सोल बाप, अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। इस बात में पत्थर बुद्धि है या पारस बुद्धि है? चुप। अरे जवाब तो दो। अरे कोई पॉइंट को लेकर
पारस बुद्धि है।
अच्छा, इस बात को लेकर पारस बुद्धि है, जो विषय पाई है
इसको क्यों खाते हो? बोलने वाला तो पारस बुद्धि हो गया ना।
हाँ क्यों खाते हो बताओ, कारण बताओ। जब अमृत मिल रहा है तो प्रैक्टिकल में अमृत पीना चाहिए या प्रैक्टिकल में विष पीना चाहिए? अमृत पीना चाहिए। पराई स्त्री और पर पुरुष के भोग को, पर स्त्री के भोग को सुख लेने को कहा जाता है विष पाई, विष पीता है, यही तो कहा जाता है। तो ये विष शंकर के लिए बताई दिया है कि दुनिया में उस विष को कोई नहीं पचाने वाला था, तो उस विष को किसने पिया? शंकर ने पिया। तो शंकर विषपाई को बोला अमृत छोड़ विष काहे को खावे, क्यों खाता है? अरे इस दुनिया में सबसे जास्ती पतित भारत के राजाएं बने या नहीं बने? और उन राजाओं में जो पतित राजाएं बने उनमें बड़े से बड़ा राजा कौन हुआ? क्योंकि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख दूसरे करेंगे, तो बड़े से बड़ा राजा को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे? कौन है? अरे बड़े से बड़ा राजा इस दुनिया में भारत का कौन है?
महाराणा प्रताप।
हाँ, राम वाली आत्मा, वो इस दुनिया का बड़े से बड़ा राजा, ऐसा राजा जिसको विधर्मी जो राजाएं थे, चाहे हिटलर हो, नेपोलियन हो, मुसोलिनी हो, कितने भी बड़े से बड़े महत्वाकांक्षी हुए हो, बड़े से बड़े संगठन सेना को इकट्ठा करने वाले हुए हो, वो भी उसके सामने द्वापर के आदि से ही लेकर के हार ही खाते रहे या जीत के गए? है हार खा के गए। अलेक्जेंडर कितने साल पहले की बात है? अरे हिस्ट्री भूल गए है? 2000 साल के अंदर की बात है या कलयुग की बात है? कलयुग की बात है। अलेक्जेंडर है, चंद्रगुप्त, चाणक्य, कितने साल पहले की बात है? हाँ जी, तो तब से लेकर के वो आत्मा इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी है, उसको कोई हराए नहीं सकता। तो वो हीरो पार्टधारी विकारी राजा या निर्विकारी राजा? विकारी राजा। तो अंतिम जन्म में भी सबसे जास्ती विषपाई कौन बनेगा? पूर्व जन्मों के हिसाब के आधार पर संस्कारों के आधार पर बनेगा
या बिना संस्कारों के बनेगा? पूर्वजन्म के संस्कार हैं भिखारी होने के। क्या पूर्व जन्मों में भी ऐसा ही करता रहा? कैसा? जो सैकड़ों की तादाद में दूसरों की पत्नियां होनी चाहिए जन्म जन्मांतर, उस बात पर ध्यान नहीं दिया। क्या किया है? क्या किया? अपना स्वार्थ पूर्ति किया या दूसरों का भी देखा? आत्मिक स्थिति में रहा या देवांग की स्थिति में रहा? तो जन्म जन्मांतर जब देवांग की स्थिति में त्रेसर जन्म रहेगा तो अंतिम जन्म में क्या असर होगा? है देवान बड़े से बड़ा देवान, गधा कहा जाता है बड़े से बड़ा देवान, गधे का भी बाप। इसलिए बोला गीता में इदम शरीरम कौन्तेय, इदम शरीरम, इदम नहीं, क्या बोला गीता में, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्याभिधीयते। ये युद्ध क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है। क्या युद्ध क्षेत्र में? ये युद्ध क्षेत्र है। ये कैसा कुंड है? रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड है, ऐसा कुंड है जिसमें सब का विनाश, सब स्वाहा। इतना बड़ा युद्ध क्षेत्र है, कोई भी नहीं बचेगा। ये क्षेत्र है शरीरम, ये शरीर, और उस शरीर की बायोग्राफी को, पूरी बायोग्राफी को, 84 जन्म की बायोग्राफी को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है कौन? शिव। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को जो जानता है, माना क्षेत्र शरीर रूपी को जो जानता है कि ये शरीर रूपी क्षेत्र है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, उसके ऊपर पूरा पक्का निश्चय हो गया 100%, उसको जानता है और उस शरीर को पहले से ही वो जानता है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम, दोनों के ज्ञान को जो जानता है वो ही सच्चा ज्ञानी है। अगर दोनों में से एक को भी भूलता है तो अज्ञान। माना उस शरीर रूपी क्षेत्र को मनुष्य सृष्टि का पिता मान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए और पहचान करके उसको जीवन में पालो करना चाहिए। अगर नहीं किया तो क्या होगा? क्या होगा? तब के जो शरीर रूपी क्षेत्र हैं, नंबर वार वो सब ध्वस्त हो जाएंगे। क्या? कम से कम बर्फ में तो जरूर दब जाएंगे। पांच तत्वों की गिरफ्त में आ जाएंगे। इसलिए जीवन अगर मनुष्य का है तो मन का उपयोग करके उस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को, वो इस सृष्टि में कहां काम कर रहा है, कौन है, कैसी स्टेज में है, उसकी क्या हिस्ट्री है, उसकी क्या जीवन कहानी है,
वो जीवन कहानी क्या बताया, औरों की जीवन कहानी बट क्या बट कौड़ी, और वो एक की कहानी जीवन कहानी बट पाऊ। उसको कहा शिव की जीवन कहानी, क्योंकि शिव समान बना तो वो शिव ज्योति बिंदु जो लिंग में दिखाया जाता है सोमनाथ मंदिर में सात्विक स्टेज में, वो बिंदु जो हीरा कहा जाता है वो कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनता। वो हीरा क्या था सोमनाथ मंदिर में, वो हीरा पत्थर था या नहीं था?
पत्थर
नवरतन पत्थर बुद्धि बनते, लेकिन वो कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनता। उसकी मिसाल उसे हीरे से नहीं दी जा सकती। हाँ, वो इस धरती पर आकर के आप समान बनाकर जाता है। तो जिसको आप समान बनाकर हीरा बनाकर जाता है, हीरो पाटीदारी बनाकर जाता है, संसार में प्रत्यक्ष होता है हीरो पाटीदारी के रूप में, वो हीरो पाटीदारी को मंदिरों में यादगार में पूजा जाता है। सारी दुनिया में वो लिंग मूर्तियां सबसे जाती खुदाई में मिली, वो सार्वभौम सत्ता है यादगार। तो वो शिवलिंग शिव भी है और उसका बड़ा रूप लिंग भी है, लिंग माने साकार। फिर उसको गीता में अव्यक्त मूर्ति ना क्यों कहा? गीता में कहा उस अव्यक्त मूर्ति में सारे जड़ और जंगम चैतन्य आत्मा उस शिवलिंग रूप बने अव्यक्त मूर्ति में समा जाते। किसमें समा जाते? अव्यक्त मूर्ति में समा। क्या वो परमधाम है जिसमें समा जाते? अरे वो परमधाम है जिसमें समा जाते। साकार परमधाम नहीं होता है, है? वो लिंग भी साकार नहीं है। साकार होता तो उसमें साकारी इंद्रियां दिखाई देती। वो आत्मा रूपी ज्योति बिंदु तो ऐसी निराकारी स्टेज में स्थित हो जाता है जहां साकार इंद्रियों का नाम निशान भी नहीं रहता। इसलिए बोला मनमना भव, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के लिए बोला मनमना भव, या 4.5 लाख के लिए ही बोला मनमना? 4.5 लाख के लिए बोला। मुक्ति और जीवन मुक्ति जिससे मिलनी है, वो मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला वो बाप प्रैक्टिकल में चाहिए या सिर्फ बोलने बोलने के लिए चाहिए? प्रैक्टिकल में चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं मैं त्रिकालदर्शी तो हूँ लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। मास्टर उसे कहा जाता है जो प्रैक्टिकल में करके दिखाए। तो प्रैक्टिकल में कौन सी आत्मा करके दिखाती है? जो राम वाली आत्मा है वो प्रैक्टिकल करके दिखाती है। स्वयं ज्योति बिंदु बनती है और ज्योति बिंदु बन करके शरीर की 10 इंद्रियों को भूल जाती है। इंद्रियों को ही भूल जाती है या मन का कार्य भी खराब? मनन चिंतन मंथन भी खराब। अगर मनन चिंतन मंथन भी चलता है ज्ञान का तो संपूर्ण आत्मा है या अपूर्ण आत्मा?
अपूर्ण आत्मा।
अपूर्ण आत्मा है। मनन चिंतन मंथन भी खराब, एकदम सदाकाल के लिए ज्योति बिंदु। ज्योति बिंदु की याद में रह करके असली बात महामंत्र लागू होता है। क्या? मत मना भव। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को कम से कम एक जन्म की जीवन मुक्ति जरूर मिलनी है। कैसे प्राप्त होगी? इसको याद करे शिव बाबा को याद करे, प्रवृत्ति को याद करे, आत्मा और प्रकृति की प्रवृत्ति को याद करे। आत्मा को पुरुष कहा जाता है, शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करने वाला, उसका साकार रूप दिखाते हैं विष्णु। विष्णु शरीर में है, ये शरीर से परे है, शरीर में है ना, इंद्रियां हैं या नहीं है? है, फिर इंद्रियों का भान है? इंद्रियों का भान नहीं। आत्मिक स्थिति में देवता तो है परिपूर्ण, इंद्रियों का भान नहीं है, इसलिए इंद्रियों को ये ज्ञान ही नहीं होता कि ये सर्प है कि बिच्छू है कि चिन्हन है। सर्पों की शैया पर, सर्पिणियों की शैया पर लेटा हुआ। क्या? किसकी शैया पर? सर्प सर्पिणियों की शैया पर लेटा हुआ उसे कोई भी भय महसूस नहीं होता, इसलिए परम पुरुष कहा गया, परम पद। इसलिए गीता में कहा है तीन प्रकार की आत्माएं, एक क्षर, क्षर माने नीचे गिरने वाली, शक्ति छीन करने वाली, और दूसरी अक्षर। दूसरी आत्मा
अक्षर,
जो एक ही है अक्षर, लेकिन वो जब इस सृष्टि पर मुकर्रर रथ में आता है तो एक आत्मा और भी है जिसको आप समान बनाता है। आप समान का मतलब सदाकाल के लिए निराकारी नहीं, शरीर में रहता है वो आत्मा, फिर भी शरीर की इंद्रियों का भोग नहीं करता, उसको नारायण कहा जाता है। दूसरा नाम लक्ष्मी नारायण का कॉम्बिनेशन है विष्णु, नहीं तो चार हाथों का कोई आदमी होता नहीं है। होता तो आज ब्रह्म वंश परंपरा में कोई न कोई जरूर ऐसे वंश होते हैं। वो समझने की बात है, स्त्री और पुरुष दो आत्माओं का मेल है जो माता पिता कहा जाता है। इसलिए कहते हैं तमेव माता, क्या पिता?
तमेव,
तू ही मेरी माता, तू ही मेरा
पिता।
एक है या दो चार?
एक,
एक ही है। वो एक ही शिवलिंग के लिए कहा जाता है कि लिंग है प्रकृति का रूप, माता पांच तत्वों का संघात, देह अभिमानी सांडा। जब तक संपन्न आत्मा नहीं बनता तब तक क्या है? है देह अभिमानी है, देह अभिमानियों का बाप है, देह अभिमानियों का बीज है या नहीं है? देह अभिमानियों का बीज है और आत्मा अभिमानियों का भी बीज है, वो है हीरा। प्रवृत्ति है तो संसार में आना है, संस्कृति में आना है, सृष्टि में आना है, तो किसको याद करना है? प्रवृत्ति को याद करना है या एक को याद करना है? ये प्रवृत्ति है प्रकृति और प्रकृतिपति पुरुष की। ये 100 साल पूरे होते हैं, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सभी धर्म की,
वो पुरुषार्थ करती है मनमना भव, उसमें समा जाती है अव्यक्त मुहूर्त में, और उसके बाद संगम योग खत्म। जो बोला याद करते करते कर्मातीत अवस्था हो जाएगी और मुक्ति जीवन मुक्ति का आत्माओं को वर्षा मिल जाएगा। पीछे चलो जाकर के थोड़ा ठहरना घर में, ऐसे नहीं तुरंत वापस आ जाओ। उसी समय 36-37 के बाद वापस आ जाएंगी आत्माएं, तो तमोप्रधान प्रकृति में आएंगी या सात्विक प्रकृति बन जाएगी चुटकी मारते। चैतन्य आत्माओं को चेंज करने में 100 साल लगे, तो जड़त्व में ही जो 5 तत्व हैं या 5 तत्वों का जो चैतन्य रूप है, परा प्रकृति पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इनका चैतन्य रूप जिनके आधार पर वो जड़ संचालित होते, तो वो परिवर्तन नहीं होंगे है। उन आत्माओं को परिवर्तन होना है या नहीं होना है? पृथ्वी जो तमो प्रधान बन गई, बड़े बड़े दुनिया में भूकंप आएंगे, सारी दुनिया में जो भी 1 मंजिल 2 मंजिल 1000 100 मंजिल 200 मंजिल के मकान है वो सब धराशायी हो जाए। तो दुनिया का सबसे बड़ा विनाश मनुष्यों का कैसे होगा? भूकंप से होगा। ऐसी प्रधान प्रकृति है धरती माता, जिसे सीता का रूप दिखाया, धरती से ही निकलती है और धरती में ही समा जाती है। तो 36-37 के बाद और भी टाइम चाहिए या नहीं चाहिए?
चाहिए,
क्योंकि आत्मा के साथ साथ 5 तत्वों से बना जो मनुष्य का शरीर है, उसकी महत्व, उसका महत्व नहीं है, है? महत्व है या नहीं? सुख भोगना है तो महत्व है, सुख तो सब भोगना चाहते हैं। ऐसी कोई आत्मा है जो सुख नहीं भोगना चाहती, कहे कि हम दुखी दुख में रहना चाहते, ऐसी कोई आत्मा? कीट पशु पक्षी पतंगे मनुष्य कोई भी आत्मा नहीं है, सबको सुख चाहिए। तो चाहिए तो 5 तत्वों को भी क्या बनाना पड़े? सत्व प्रधान बनाना पड़े। तो वो 5 तत्वों की जो चैतन्य परा प्रकृति है, वो आत्माओं का जो संघात है, संगठन है, उन आत्माओं की भी प्रजा होगी या नहीं होगी? पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश जो चैतन्य रूप में देवता कहे जाते हैं शास्त्रों में, देवता कहे जाते हैं नहीं? होते हैं या नहीं? होते हैं। तो वो जब तक सात्विक न बने, तब तक जो जड़ तत्व है पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, वो भी सात्विक नहीं बन सकते। तो इसलिए उनको भी पावन बनने में टाइम चाहिए या नहीं चाहिए? है, चाहिए। इसलिए कहा परम धाम बाप के घर में जाकर ठहरना, उतावली नहीं करना, जल्दी से आ जाए, है नहीं तो तमो प्रधान प्रकृति के 5 तत्वों में आना पड़ेगा और ही दुखी हो जाएंगे, है? फिर क्या होगा? है, फिर सोचेंगे आए थे हरभजन को, हम 36-37 के बाद सुख भोगेंगे, स्वर्ग आ गया, होटल लगे कपाल। तो नहीं, ठहरना। कहाँ ठहरना? परम धाम। माने कहाँ? है परमधाम जी कहाँ? अरे जो विराट रूप दिखाया है उसमें पांव को वो पांव का जो घुटने से नीचे का हिस्सा है उसे बताया कलयुग, घुटने से ऊपर का हिस्सा है नाभि तक उसे बताया द्वापर, वहां से द्वैतवाद शुरू होता है ना। क्या विराट रूप का क्या शुरू हो गया? एक टांग इधर गई, एक टांग इधर गई। भारतीय धर्म इधर जाते हैं और विदेशी धर्म उधर जाते हैं, बाई ओर जाते हैं, खराब रास्ते में। तो बताया वाम मार्ग में गया, द्वैतवाद हो गया, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें हो गई, दो से चार, चार से आठ होते ही जाते। तो ये द्वापर में विराट रूप का स्वरूप दिखाया, फिर नाभि से ऊपर का हिस्सा त्रेता दिखाया और उससे गर्दन से ऊपर का हिस्सा सत्ययुग दिखाया। क्या वहां टोटल इंद्रियों का सुख भोगते हैं ज्ञान इंद्रियों का। त्रेता में देह का अंश शुरू होता है। तो देखो ये विराट पुरुष में सारी सृष्टि समाई हुई है। जिन्होंने विराट रूप का चित्र देखा होगा वो जानते हैं उसमें देवताएं भी दिखाई, देवियां भी दिखाई, राक्षस भी दिखाए, मनुष्य भी दिखाए, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी दिखाए, सात प्राणी दिखाए जाते। साबित होता है कि वो एक रूप है जो गीता में बताया गया परमात्मा इति उदाहरत है। उसको क्या कहते हैं? उदाहरण माने कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमात्मा। इसलिए परमात्मा शब्द परमपिता के बाद आता है, जैसे शिव के बाद शंकर आता है, बड़ा पहले छोटा बाद। तो बड़ा है आत्माओं का बाप परमपिता, जिसका कोई पिता नहीं, और फिर बाद में है परमात्मा। कैसी आत्मा? जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं में परम पार्टधारी है, उसको परमात्मा इति उदाहरण है। वो तीसरी आत्मा है, एक क्षर, एक अक्षर, और क्षर आत्माओं में भी एक परमात्मा विष्णु रूप परम पद कहा जाता है। तो वो परम पद संगम युग में प्रत्यक्ष तो होता है, लेकिन सृष्टि कब शुरू होती है? है ये सृष्टि इंद्रियों का सुख लेने के लिए शुरू होती है या बिना इंद्रियों के सुख लिया जा सकता है? चाहे वो ज्ञान इंद्रिया हो, चाहे वो कर्म इंद्रिया हो। सतयुग में राधा कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं प्यार से, वो कौन सा सुख है? ज्ञान इंद्रियों का है या कर्म इंद्रियों का? ज्ञान इंद्रियों का सूक्ष्म सुख है, वो सदाकाल का होता है। कर्म इंद्रियों का सुख अल्पकाल का, कर्मधारा जिसे कहा जाता है। देवताएं ज्ञान इंद्रियों से कोई कर्म नहीं करते, सिर्फ सुख भोगने का काम करते हैं। सारा काम कौन करती है? देवताओं को सुख देने के लिए सारा कार्य प्रकृति दास ही करती है, मनुष्य आत्माएं नहीं करती, देव आत्माएं नहीं करती। तो कर्म कौन करते हैं? कर्म के लिए जो जोर दिया जाता है दुनिया में, आज के जो छोटे बड़े अधिकारी हैं उनके ऑफिस में लिखा होता है क्या, कर्म ही पूजा है। तो वाक्य से पहले गधे का आप जोड़ दो तो गलत है या सही?
सही।
गधे से ज्यादा सच्चाई से कर्म कोई नहीं करता। सुबह से शाम तक गधा वजन ढोता रहेगा और शाम को आकर के गाय बैल की बची हुई घास खा के चुपचाप सो जाए। कोई विरोध कुम्हार के सामने या धोबी के सामने नहीं करेगा। तो बड़ा कर्मयोगी है या छोटा कर्मयोगी है? अरे बोलो ना, बड़े से बड़ा कर्मयोगी गधा है। तो कर्मयोगी बनना अच्छा है या नहीं? अच्छा है या नहीं? अच्छा तो है, लेकिन यहाँ बताया राजयोग में ये खास बात बताई कि कर्मयोगी तो बनना है लेकिन कर्म करते शिव बाबा की याद जरूर रहनी चाहिए। जो काम गधा नहीं कर सकता, गधा किसी के डंडे के नीचे चलेगा। किसके डंडे के नीचे चलता है? कुमार या धोबी के डंडे के नीचे चलेगा। वो कह सकता है मैं कर्मयोगी हूं, कर्म ही पूजा है। तो ऐसे कर्म करने वाले कर्म इंद्रियों से ऊंचे हैं या नीचे हैं? क्या है, ऊंचे हैं या नीचे हैं? है? अरे सकते में आ गए, नीचे हैं या ऊंचे हैं? ऊंचे हैं। कर्मयोगी माने गधा सबसे बड़ा कर्मयोगी है तो ऊंचा है, योगी तो है ही नहीं। यहाँ तो बोला कर्मयोगी, कैसे कर्म करते साथ साथ योगी भी बने। किससे योग लगाने वाले? हाँ, शिव बाबा के साथ योग लगाने वाले। अगर योग को अलग कर दिया, कर्म को अलग कर दिया, तो कर्मयोगी तो बने ही नहीं, और कर्मयोगी नहीं बने तो राजयोगी नहीं कहे गए। इसी बात में राज भरा हुआ है कि इस बात में कि कर्म तो करें कर्म इंद्रियों से, भले भ्रष्ट कर्म इंद्रियां हैं फिर भी क्या करें? शिव बाबा को याद करने की प्रैक्टिस नहीं छोड़े। अगर ये छोड़ दिया तो क्या बनेंगे? है विकर्म बन जाएगा, पाप कर्म बन जाएगा। ठीक है, कर्म इंद्रियां हैं, कर्म करना है, कर्म योगी बनना है। तो जो कर्म इंद्रियों में प्रधान कर्म इंद्रिय क्या है? काम इंद्रिय। उस काम इंद्रिय को भी कर्म करते भूलना है या नहीं भूलना है? है? भूल रहे हैं लेकिन नहीं भूल रहे हैं, भूल रहे हैं। तो 100% भूलने वाला तो एक ही निकलता है, इसलिए उसके लिंग की पूजा होती है। और इंद्रियां जो हैं उनको सभी देवताएं जीतते तो हैं लेकिन काम इंद्रियों को कोई जीत नहीं पाता। इसलिए उनके काम इंद्रिय की पूजा नहीं होती है। इसकी काम इंद्रिय की पूजा होती है, है? शिवलिंग की काम इंद्रिय की पूजा होती है और देवताओं के कमल नेत्र कहे जाते हैं, मुख कमल कहा जाता है, पाद हस्त कहा जाता है, हस्त पाद कमल कहा जाता है, तो उनके और अंग पूजे जाते हैं, लेकिन शिव बाबा का लिंग ही पूजा, शिव बाप का या शिव बाबा का है, शिव बाबा का। हमारा काम पूरा हुआ संक्षिप्त तक, किसका काम है, शिव बाबा का, तो बाकी 500-700 करोड़ का नहीं है, और इंद्रियां जीतनी नहीं है, है? और इंद्रियों को जीतने वाले नंबर नहीं, नंबरवार नहीं निकलेंगे,
निकलेंगे
तो वो कार्य सारा ही संक्षिप्त तक पूरा होना चाहिए। चैतन्य आत्माओं को जीवन मिल जाए, सुखी जीवन, सुख न मिले, इसी कर्म युग में अनुभव करके क्या अनुभव करके जाए, है? कौन सा सुख गाया हुआ है, अति सुख इसके लिए गाया हुआ है, वो भोगोगी ऐसे गुप्त पुरुषार्थी जिन्होंने इस गुप्त पुरुषार्थ को समझा है, जाना है, सुना है, दूसरों को सुनाया है, समझाया है, ऐसे गुप्त पुरुषार्थ गोप गोपी के रूप में जो निकलते हैं पुरुषार्थ करने वाले, उनकी लिस्ट है 16,108। इनकी संख्या कौन से युग में कब तक पूरी होगी, त्रेता के अंत तक, आखिरी जन्म तक, त्रेता की जो तीन पटी हुई सीढ़ियां हैं उनकी अंतिम जन्म तक पूरी होगी। 16,000 गोप गोपी गुप्त संबंध बाप से जोड़ने वाले, संबंध इंद्रियों के द्वारा जोड़े जाते हैं या बिना इंद्रियों के जोड़े जाते हैं, इंद्रियों के द्वारा जोड़े जाते हैं, लेकिन कायदे अनुसार या बेकायदे अनुसार, कायदे अनुसार, जो ईश्वरीय कायदा है, क्या कायदा है, है? क्या कायदा है,
स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र
रहो, नहीं
सुख दूर सुख लो,
लेकिन एक से या दो चार से या अनेक से, हाँ एक से सुख लेना है, अनेकों से सुख लिया तो क्या होगा, विविचारी सुख हो जाएगा, और विविचारी सुख की शूटिंग होगी तो फल कहाँ देगी, कौन से युग में, द्वापर कलयुग में, और सतयुग त्रेता के जन्म कम हो जाए। इसलिए क्या करना है, है 100 वर्ष का संगम पूरे होते होते ये पक्का करना है, जो मुरली में बोला क्या, बल पति तो होना है, चाहे आंख से चाहे कान से सारी बातें सुन करके जो बोला, एक से ज्ञान सुनना चाहिए या अनेक से सुनना चाहिए, अनेक से ज्ञान सुना तो विविचारी ज्ञान हो जाएगा, अनेक से ज्ञान सुना, हाँ ये बात तो हमने भी सोची ऐसा जरूर होगा, बस हुआ बनता था। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं जिसको हमने सदगुरु मान लिया, क्या मान लिया, सदगुरु, क्योंकि जान लिया बाप टीचर सदगुरु का पार्ट एक ही आत्मा का है या अनेकों का है, है सर्वव्यापी है या एक व्यापी है, एक व्यापी है, जब है ही एक व्यापी तो उस एक व्यापी बाप टीचर सदगुरु का पार्ट जो एक का ही है उसको जान लिया तो उसकी ग्लानी हम सुन नहीं सकते। सुनने का मतलब ये नहीं है कोई सुना रहा है तो हम चौकड़ी मार के भाग जाए क्या भगोड़े बन जाए, नहीं, हमारी इंद्रियों में इतनी शक्ति है क्या हम सुनते हुए न सुने अवॉइड कर दें, डोंट केयर, नहीं कर सकते, कर सकते बकते रहो, हम नहीं सुनते, ध्यान नहीं देते, हम ये बात दूसरों को सुनाए भी नहीं सकते, खुद धारण भी नहीं कर सकते। ऐसे अब भी विचारी होगी चाहे आंख से चाहे कान से चाहे कोई भी इंद्रिय से, नहीं तो मुख से भी रज रज के बातें करते हैं ना अकेले में, है जिसको ज्यादा प्यार करते हैं उसको सारी बातें दिल की बताते हैं, क्यों बाप को भी उतना पोता मिल नहीं देते होंगे जितना मुख से जिससे दिल से प्यार होता है उसका पोता मेल भी नहीं देते, उस पोतों मेल को छोपा के जेब में रखते, तो बोला बाप ने बहुत प्यारी चीज होती है तो जेब में छुपा के रखी, कोई देख न ले कोई सुन न ले, तो ये भी एक बात है क्या 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 बात, मुख से अगर बोल बोलने हैं कान से अगर सुनना है तो एक से ही सुनना, गले पड़ना है गले से मिलते हैं ना, दोनों बहाने ऐसे करके मिलते हैं ना, है प्रवृत्ति मार्ग है या नहीं है, वृत्ति वृत्ति माने गोल आकार, इधर से बाहें गई उधर से बाहें आई गोल आकार हो गया कि नहीं, वृत्ति हुई वृत्त, वृत्त माने गोल, प्रवृत्त प्रवृत्त माने प्रकृष्ट रूप से वृत्ति बन जाए, कोई छुड़ाना चाहे तो भी नहीं छूटे, ऐसी प्रवृत्ति। तो देवताओं की प्रवृत्ति होती है या नहीं होती है, है? होती है, देवताएं हैं श्रेष्ठाचारी उनकी श्रेष्ठ इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है, और राक्षस राक्षस हैं भ्रष्ट इंद्रियों के आचारी उनकी भ्रष्ट इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है, वो जिसकी पूजा होती है मंदिर में शिवलिंग की वो भ्रष्टाचारियों का भी बाप और श्रेष्ठाचारियों का भी बाप, उसको मंदिर में अर्घा दिखाया गया, देखा है उस अर्घे के बीच में लिंग, वो अर्घा है टांगों की यादगार, क्या स्त्री और पुरुष क्या बन गया व्रत बन गया, प्रवृत्ति हो गई, वो प्रवृत्ति जो है वो विधिचारी प्रवृत्ति है या अविधिचारी प्रवृत्ति है, विधिचारी और भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति है या शिष्टाचारी प्रवृत्ति है, भ्रष्टाचारी, लेकिन वो भ्रष्टाचारियों का भी बात, इसलिए उसकी भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति भी पूजी जाती है, ये तो खराब बात हो गई, भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति क्यों पूजी जाती है, अरे दुनिया में जितने मनुष्य हैं वो सब भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति में है या नहीं है, तो दुनिया वाले भी पूजे जाने चाहिए ना, राक्षसों की भी पूजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए,
नहीं,
नहीं होनी चाहिए, क्यों वही काम वो करते हैं, वही काम तुमने जो मंदिर में बैठाया हुआ है उसकी वो दिखाइए, हाँ क्योंकि वो इंद्रियों की विस्मृति में बैठा हुआ है, इंद्रियों के सुख की उसे याद अंश मात्र भी नहीं, इसलिए वो पूजा जाता है, और जो इंद्रियों के सुख की स्मृति को भूल ही नहीं पाते, कैसे करें? सन्यासी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? ये हो ही नहीं सकता, क्या नहीं हो सकता है? स्त्री पुरुष जैसे शिवलिंग दिखाया गया, ऐसे साथ में वृत्ति में प्रवृत्ति में रहे, ये हो ही नहीं सकता। वो शंकराचार्य कहते हैं हो नहीं सकता, और फिर छोड़ के भागते हैं, किसके ऊपर दोष मढ़ देते हैं?
हैं? नारी नरक की द्वार,
नारी नरक का द्वार है। शिव बाप क्या कहते हैं? शिव बाप नहीं, शिव बाबा।
शिव
बाबा क्या कहते हैं? नारी नरक का द्वार नहीं है, नारी नरक का द्वार है। लेकिन कब? जब उन नारियों को जो बाप के साथ प्रवृत्ति जोड़ने वाली है, चाहे ज्ञान इंद्रियों से चाहे कर्म इंद्रियों से, उनको माता के रूप में देखोगे तब क्या है वो? स्वर्ग का गेट खोलने वाली है। जब तक माता के रूप में नहीं देखा, तुम स्वर्ग के गेट में घुसने काबिल नहीं हो। भिखारी हो, भ्रष्टाचारी हो, निकलो बाहर। ऐसा भी समय आएगा जो एक भी भिखारी इस ब्राह्मणों के संगठन में प्रवेश नहीं कर सकेगा। करेगा?
नहीं करेगा,
नहीं करेगा। ऐसी संपन्न राजधानी बनेगी, सतयुग से भी श्रेष्ठ राजधानी, वाइब्रेशन का सुख लेने वाली राजधानी, इंद्रियों का सुख लेने वाली राजधानी नहीं, जो पहले पत्ते कृष्ण की दिखाई जाती है। सुख को क्या देते हैं, क्या नाम?
अतीन्द्रिय
सुख है, अतीन्द्रिय सुख। किससे पूछो?
गोप
गोपियों से पूछो, जिन्होंने गुप्त संबंध जोड़े हैं। प्रैक्टिकल में उस बात को गहराई से जाना है, उनसे पूछो क्या, क्या पूछो? अतीन्द्रिय सुख क्या होता है, इंद्रियों से परे का वो वाइब्रेशन का सुख क्या होता है, जो देवताओं को भी नसीब
नहीं
है। कृष्ण और राधा अनुभव करेंगे सभी हुए
नहीं,
नहीं अनुभव करेंगे।